ओम शांति, ओम शांति। आप सब आए, बाहर आई, परमपिता परमात्मा के घर बाहर आई, परमपिता परमात्मा मिला आपको। जब से नसीब बदल गया है तभी से, परमपिता परमात्मा मिला जब से नसीब बदल गया है तभी से, परमात्मा ही है सबका डेस्टिनेशन। परमात्मा से बात करने के लिए करना है मेडिटेशन। बुलाया है परमपिता परमात्मा ने आप सभी को, चलो हम सभी मिलकर करें इस कार्यक्रम की शुरुआत। परमपिता परमात्मा की याद से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड के हार्मनी हॉल में आज 19 जून 2025 के इस स्वागत सत्र में सभी महान कलाकारों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस सद्भावना सभाग्रह में हमारे माननीय वरिष्ठ दीदियां, भाई और महान कलाकारों का मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। हमारे ब्रह्मा कुमार हरीश मोयल, परम कलाकार की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति दिव्य मानव, आज का जो कार्यक्रम है उसमें हमारे हरीश मोयल भाई जी को मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। हमारे भ्राता मोहन सिंगल जी को, हमारे दयाल भाई जी मंच पर आए। और हमारे हरीश मोयल जी जो सिंगर, कंपोजर और सॉन्ग राइटर हैं, इंडियन आइडल सीजन 1 टॉप फाइनलिस्ट हैं, बिग स्टार, IMA अवार्ड विनर फॉर सूफी सॉन्ग ऑफ द ईयर मेरे सयान, उनके जो सॉन्ग है बहाने जिंदगी ने फ्रॉम मूवी MA पास वॉज एप्रिसिएटेड बाय इंडस्ट्री, हिज बैंड शुक्राना इज लव्ड बाय द ऑडियंस, मोर देन 50 बाबास के जो गीत हैं, माना ब्रह्मा कुमारी के जो गीत हैं वो हमारे हरीश मोयल भाई जी ने लिखा, गाया हुआ है, एक्टेड इन थिएटर नेम्ड उमराव जान अदा, रिसेंटली परफॉर्म्ड 15 शोज इन लंदन, 3500 लाइव शोज ऑल ओवर द ग्लोब। और हमारे हरीश मोयल भाई जी को हम सुनेंगे, उसके पहले मैं उनके लिए कहना चाहूंगी, हरीश भाई इनका नाम, गीत गाकर सबका मन लुभाना है इनका काम, थोड़ा करतल ध्वनि भी करें, हर आत्मा इनके मधुर आवाज में डूबी यही है इनकी खूबी। तो हम अभी हरीश भाई जी को सुनेंगे।
ओम शांति। तपस्विनी दीदी जब भी स्टेज में होते तो मेरे को और ऐसा लगता है कि एक शक्ति हमारे साथ है, ऐसी हमारी दीदी जी के लिए भी जोरदार ताली आप बजाएं। मुझे आज बहुत पुरानी एक बात याद आ रही है, गाना तो आप हमेशा सुन सकते हैं YouTube पे भी जाके, लेकिन ये खास बात है कि मुझे ईयर ठीक से याद नहीं है, दयाल भाई जी सामने बैठे हैं, बट शायद ये 96 या 97 की बात है जब ये पूरा भवन बना था और मैं 17-18 साल का था, और पहली बार जब मैं ज्ञान सरोवर में पहुंचा और यहाँ पे जब आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं, ये धरती की कोई जगह नहीं हो सकती है। यहाँ पे मैंने ऊपर देखा, सब भाषाओं के ट्रांसलेटर्स बैठे हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से लोग आए थे दयाल भाई जी उस समय पे, आपको तो याद होगा। तो वो अनुभव मेरा जिंदगी का एक ऐसा अनुभव रहा, बड़े दादी जी जब यहां पे थे और उन्होंने मुझे शॉल उड़ाई और यहां पे कंपटीशन में मुझे थर्ड प्राइज मिला था सिंगिंग कंपटीशन में। तो आज भी मुझे लगता है कि काश उस समय मुझे समझ आ गई होगी बात कि भगवान मुझे यहां क्यों लेके आए हैं। तो आप जो भी कलाकार यहां आए हैं, मैं आपको बता दूं कि आप बहुत खास कलाकार हैं जिनको इस परम कलाकार के घर में आमंत्रण मिला है। और यकीन मानिए, दिव्य मानव, क्या अगर हम मानव भी आज की जमाने में बन जाएं तो दुनिया में हमारी बहुत कदर हो जाती है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप कोई ना कोई दिव्य गुण यहां से धारण करके जाएंगे। और एक अगर इजाजत दे दीदी, एक 30 सेकंड हम सब लोग ओम की साधना कर सकते हैं, फिर मैं गाना सुना दूंगा। तो आप एक मिनट के लिए सिर्फ सीधे होके अगर बैठेंगे और हम सब उस परम कलाकार के लिए एक बार उस छोटी सी यात्रा को तय करेंगे जो मैं हर दिन करता हूं, उस परम धाम में पहुंचने का। कहते हैं संगीत ईश्वर तक पहुंचने की सबसे सरल सीढ़ी है। तो लंबी गहरी सांस लेंगे, ओ एक बार और लंबी गहरी सांस लेंगे, उड़ेंगे उस आसमान की ऊंचाइयों में, हो ये ध्वनि का विमान हमें चांद सितारों की दुनिया तक ले जाता है। लेकिन इससे आगे जाने के लिए साइलेंस की शक्ति जो साइलेंस वर्ल्ड में हमें लेके जाती है, उस परम कलाकार, उस परम पिता परमेश्वर के धाम में पहुंचेंगे। वहां पे धन्यवाद करेंगे उनका, बहुत सारी शक्तियों को अपने अंदर धारण करके एक बार फिर से अपनी धरती पर लौटेंगे। एक आखिरी बार फिर से अपने विमान को उड़ाएंगे उस परम धाम की तरफ। लंबी गहरी सांस लेंगे, ओ महसूस करेंगे परमात्मा की उन शक्तियों को जो वो हम में भर रहे हैं। अपने पैर के अंगूठों से लेके अपने सर तक उन शक्तियों से अपने आप को उत्प्रोत करके शुक्रिया करेंगे भगवान का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। प्लीज प्ले द ट्रैक। So, ये गीत हमारे ललित भाई ने लिखा है, बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। ब्रह्मा कुमारी इसका अकाउंट डिपार्टमेंट संभालते, लेकिन वो काम करते हुए भी इतना सुंदर गीत उन्होंने लिखा। So, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ विद्वान कलाकार हैं जो अपना काम करते हुए भी भगवान को साथ रखते हैं। तो इसी गीत का भाव भी यही है।
हो हर वक्त मेरे साथ हो, विश्वास रहता है भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर वक्त मेरे साथ हो, विश्वास रहता है भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। जब भी निकलता घर से तुम साथ चलते हो, धूप भरी राहों में बादल से ढलते हो।
यहाँ पे सचमुच ऐसा लगेगा कि बादल हमारे साथ चल रहे हैं।
जब भी निकलता घर से तुम साथ चलते हो, धूप भरी राहों में बादल से ढलते हो, यात्रा सुखद ही होगी, यात्रा सुखद ही होगी। शुभ भाव रहता है भगवान, तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है।
और भगवान को हर वक्त जब हम अपने साथ रखें तो जीवन की हर बाधा हर परेशानी दूर हो जाती है।
तुमने मुझे जो दे वो खुशियां लुटाता हूँ, तेरा नाम रूप गुण मैं सबको बताता हूँ। तुमने मुझे जो दे वो खुशियां लुटाता हूँ, तेरा नाम रूप गुण मैं सबको बताता हूँ। सबके दिल ये रोशन हो, सबके दिल ये आभास रहता है, भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर एक मेरे है ये दिल गीत गाता है, सब प्रेम से रहे ये सरगम सुनाता है। हर एक मेरे है ये दिल गीत गाता है, सब प्रेम से रहे ये सरगम सुनाता है। जन्नत बने जहाँ ये, जन्नत बने जहाँ ये शुभ भाव रहता है, भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है।
आज सारी दुनिया बस इसी बात को लेकर कश्मकश में है कि कैसे इस दुनिया को, इस धरती को फिर से जन्नत बनाया जाए। तो भगवान का ये काम शुरू हो चुका है और उस परम कलाकार के साथी बनके हम इस काम में उनके मददगार बने तो सचमुच में हमारी कला, हमारी मानवता चरितार्थ हो जाएगी। शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू।
भाई साहब ने बहुत सुंदर गीतों के द्वारा परमात्मा के साथ कैसे हम जुड़ जाएं वो बताया, इसके लिए भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी हमारे मंच पर हम सभी मेहमानों को और हमारे ब्रह्मा कुमारी के दीदियों और भाइयों को मंच पर बुलाएंगे। हमारे दयाल भाई जी, राजयोगी ब्रह्मा कुमार मोहन भाई जी, मोहन सिंगल जी, ब्रदर जुगनू जी, प्रभा दीदी ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर हैं, दीदी जी को भी हम मंच पर बुलाएंगे। प्रोफेसर स्मिता सहस्रबुद्धे जी, ब्रदर ऋषिकेश चूरी जी, चेयरपर्सन ऑल इंडिया सिने वर्कर्स, हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, ब्रदर ऋषिकेश चूरी जी, डॉक्टर हरविंदर मनकार कार्टूनिस्ट, वो भी मंच पर आ जाएं। हमारी ब्रह्मा कुमारी अंजलि अरोरा जी और भ्राता अनिल भाई जी, मैं हमारी मीठी बहनों को आमंत्रित करती हूँ, वो बैज और फूलों के द्वारा हमारे मंचासीन मेहमानों को स्वागत करे। प्रेम दीदी जी भी आए मंच पर। मधुरवाणी ग्रुप जो ब्रह्मा कुमारी संस्था का हर कार्यक्रम में इनके संगीत द्वारा ही हम सभी का स्वागत करते हैं। 6000 से भी अधिक उन्होंने गीत लिखा हुआ है और गीत गायन करते हैं हमारे मधुर वाणी ग्रुप। अच्छा कोई बात नहीं। मुंबई से डांस ग्रुप आए हुए हैं। हम नृत्यों के द्वारा सभी तो पहले हम नृत्यों के द्वारा स्वागत करेंगे। तो वेलकम डांस। नृत्य एक कला है जो भावनाओं को व्यक्त करने का एक सुंदर माध्यम है। आ रहे हैं मुंबई से मौवा ग्रुप, ला रहे हैं स्वागत करने अपना ट्रुप। तो हम मुंबई की जो कलाकारा हैं उनको स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। वो अपने नृत्य के द्वारा आप सभी मेहमानों का स्वागत करेंगे। स्वागत नृत्य।
स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका,
स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका।
खिली है कलियां, सजे है द्वार, खिली है कलियां, सजे है द्वार, इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका,
स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका।
खिली है कलियां, सजे है द्वार, खिली है कलियां, सजे है द्वार, था इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका।
जो भी उनको
परिवार से मिलाया, पुलकित हृदय से वेलकम आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका,
स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका।
खिली है कलियां, सजे है द्वार, खिली है कलियां, सजे है द्वार,
आए
था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद ईवा, आर्या और रिया का, हमारे मधुरवाणी ग्रुप जो वर्षों से हरेक का स्वागत करते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था का ही ये ग्रुप है, मधुरवाणी का ये खूबसूरत सा ग्रुप, जिसमें हम सब जाएंगे डूब, शिव बाबा के मधुर गीत है गाते, सबके मन में स्नेह और प्रेम बढ़ाते। मधुरवाणी ग्रुप हमारे सतीश भाई जी, नितिन भाई, गोविंद भाई, विचिंद भाई और मिनेश भाई।
ओम शांति। एक बार सभी कहें ओम शांति। फिर ज्ञान सरोवर चहक उठा, महक उठा संसार है, शुभागमन से आपके हम सबको आनंद पार है। एक बार जोरदार तालियां बजा के अपना अभिनंदन स्वीकार कर दें।
फिर ज्ञान सरोवर चहक उठा, महक उठा संसार है, शुभागमन से आपके हम आनंद अपार है, ऐ कलाकारो आपका अभिनंदन बारंबार है, ऐ कलाकारो आपका स्वागत सौ सौ बार है, स्वागत सौ सौ बार है।
आपकी तालियां होनी चाहिए, बहुत ही शुभ अवसर है।
ये प्यारा ज्ञान सरोवर है, ये मंगल मधुर मनोहर है, अरावली आभूषिकरों पर महिमा हर अधरों पर है, ये प्यारा ज्ञान सरोवर है, ये मंगल मधुर मनोहर है, अरावली आभूषिकरों पर महिमा हर अधरों पर है, मानव को देव बनाने लिया प्रभु ने अवतार है, ऐ कलाकारो आपका अभिनंदन बारंबार है, ऐ कलाकारो आपका स्वागत सौ सौ बार है, स्वागत सौ सौ बार है। अरावली पर्वत माला ले झुक झुक कर पहनाती है, धन्य धरा आबू की माटी माथे तिलक लगाती है, अरावली पर्वत माला ले झुक झुक कर पहनाती है। धन्य धरा आबू की माटी माथे तिलक लगाती है। इस देव दुर्लभ दृश्य को जग रहा निहार है। ऐ कलाकारों आपका अभिनंदन बारंबार है। ऐ कलाकारों आपका स्वागत सौ सौ बार है। स्वागत सौ सौ बार है। प्रभु कलाकार ने मानव को दैवी रूप प्रदान किया। वही दैवी रूप रचाने को कलाकारों का आह्वान किया। प्रभु कलाकार ने मानव को दैवी रूप प्रदान किया। वही दैवी रूप रचाने को कलाकारों का आह्वान किया। कलाकारों से प्रभु कलाकार को बेहद प्यार है। ऐ कलाकारों आपका अभिनंदन बारंबार है। ऐ कलाकारों आपका स्वागत सौ सौ बार है। अभिनंदन बारंबार है। स्वागत सौ सौ बार है। अभिनंदन बारंबार है।
अति सुंदर, बहुत सुंदर रीति से उन्होंने परम कलाकार के साथ हम सभी कलाकार कैसे जुड़े उसके बारे में बहुत सुंदर नृत्य के द्वारा उन्होंने स्वागत किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। करतल ध्वनि के द्वारा हम धन्यवाद करें। हमारे हरिश्मल भाई और एक सुंदर स्वागत गीत लेकर आ रहे हैं। हरिश्मल भाई जी।
ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत आपका मेरी भी तरफ से। मधुरवाणी ग्रुप ने जैसे किया और हमारे सतीश भाई जी जो बीच में खड़े थे वो सिर्फ गाना नहीं गाते हैं, वो बहुत सारे अच्छे गाने उन्होंने लिखे हैं और उनके लिखे हुए कुछ गाने तो ऐसे हैं कि अगर एक गाना दीदी मैं एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि अक्सर हमारे मन में बहुत सारे ख्याल चलते हैं। आर्टिस्ट तो हमेशा सोचते हैं कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहे और उसके लिए एक ही चीज़ हम बोलते हैं कि भगवान ऐसा कर दो, है ना। और भगवान ने इतनी सारी शक्तियां जो हमें दी है तो मैं भी ऐसे मांगता था। मैंने हमेशा एक गाना गाता था, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाते हैं। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। तो ये गाना सतीश भाई जी ने लिखा है, एक बार उनके लिए ताली बजाएं जोरदार। तो मैं ये गाना गाते हुए हमेशा सोचता था कि भगवान ये गाना तो सुरेश वाडेकर जी ने गाया है, मेरा भी तो कोई गाना होना चाहिए ना जो मैंने गाया हो और जो सब सुनते हो, तो जिसमें मेरा नाम लिखा हो। तो ऐसी धारणा चलती थी दीदी तब तो मन में। लेकिन अभी इतने सारे गाने सतीश भाई जी ने लिख के दिए, हमारी सपना दीदी ने दिए और वो एक से बढ़ के एक गाने जब लोगों को पहुंचते हैं और वो बोलते हैं कि इन गानों से हमारा बुद्धि योग परमात्मा से जुड़ जाता है, तो मुझे लगता है कि वो जो सुखद अनुभूति है कभी आप में से कोई लोग महसूस कर पाए कि आपकी बनाई हुई किसी कलाकृति से किसी का मन उस परम कलाकार से जुड़ जाए तो फिर आपकी कला का इससे अच्छा उपयोग कोई हो नहीं सकता है। तो एक और गाना आपके लिए।
दाता तेरे याद में बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में, तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में।
कहते जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन का हाथ श्री कृष्ण ने थामा था, तो उसी ज्ञान से, उसी गीता के ज्ञान से उन्होंने धर्म का वो युद्ध जीता। तो वैसे ही जिसका हाथ परमात्मा ने खुद थामा हो, उस सर्वशक्तिमान ने, वो भी इस महाभारत के युद्ध को जीत सकता है। तो उस परमात्मा का हाथ सदा हमारे साथ रहे।
हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवान तेरी याद में, मौला तेरी याद में, साहिब तेरी याद में, बाबा तेरी याद में, या रब तेरी याद में।
चाहे किसी भी नाम से उसे पुकारो, वो इतना भोला है कि हर नाम से वो पुकार सुन लेता है।
तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद ने। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए भगवान तेरी याद ने। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में, तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए भगवान तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसे, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसे, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में।
जब हम अपनी कलाओं को भगवान का आशीर्वाद समझते हैं तो सचमुच उस परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि वो कला हमें कलाकार बना देती है। और फिर उस कलाकार के मन में इस बात का अहंकार नहीं होता कि ये कला मेरी है, ये सब कुछ उसका है जिसने दिया है। और अगर उसके कार्य में लग जाए तो फिर ये कला दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करती है। तो आप सबके लिए ऐसी शुभकामनाएं कि आप अपनी कला को बहुत बहुत इस समारोह से विकसित करके जाएं और एक उत्कृष्ट कलाकार बन के जाएं, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी का। हमारे प्रेम दीदी करनाल के, प्रेम दीदी हमारी है सबसे प्यारी। आप 1980 से इस संस्था से जुड़े हैं। 1984 में अपना जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित किया। करनाल के कनेक्शन में 15 मुख्य सेवा केंद्र, 7 उप सेवा केंद्र और 650 जितने गीता पाठशाला दीदी के संचालन से कार्यरत हैं। दीदी जी उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड के सब जोन इंचार्ज हैं और दीदी आर्ट एंड कल्चर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप अपने शब्दों के द्वारा सभी कलाकारों का स्वागत करेंगे प्रेम दीदी जी।
ओम शांति। आप सभी भी प्यार से बोले ओम शांति। अच्छे उमंग और उत्साह के साथ बोलें। अभी तो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, हमारा उमंग उत्साह बरकरार रहना चाहिए। तो सभी मिलकर के पूरे उमंग उत्साह के साथ बोलेंगे ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप शांति के सागर जगत नियंता परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान, मंच पर उपस्थित व आज की सभा में उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सभी आर्ट एंड कल्चर विंग की नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका कि बहुत ही सुंदर विषय है परम कलाकार की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति दिव्य मानव, और साथ ही साथ राजयोग शिविर भी रहेगा जिसमें हम सभी भारत के कोने कोने से यहाँ पर आकर के उपस्थित हुए हैं। तो हम देख रहे हैं आप सभी में विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं, जिन सुंदर कलाओं को आप पूरे विश्व में, भारत भर में प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आज जो सुंदर विषय है कि परम कलाकार की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति दिव्य मानव, तो इस विषय को सुनकर के ही समझ में आता है कि परमात्मा ने जब हम सबको संसार में भेजा था तो अपने जैसी इमेज में भेजा था, देवी और देवता रूप में भेजा था, एक दिव्य मानव के रूप में भेजा था। सतयुग और त्रेता युग में वो दिव्यता, वो श्रेष्ठता, वो पवित्रता, वो शुद्धता, वो सात्विकता हम सब में रही। परंतु धीरे धीरे कालांतर के अनुकूल युग बदलता गया, समय बदलता गया और हम सभी कहां पहुंच गए, घोर कलयुग में। तब पुनः परमपिता परमात्मा को आकर के हमें स्मृति दिलानी पड़ी कि मैंने आपको दिव्य स्वरूप में रचकर भेजा था, लेकिन आज मानव दिव्यता से नीचे आता हुआ आसुरियता की तरफ बढ़ गया है। लेकिन पुनः मानव को दिव्य मानव बनाना है तो उसमें परम कलाकार परमात्मा, जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार है, सर्वोच्च कलाकार है, उनके साथ साथ आप सभी जो हमारे भाई और बहनें, कलाकार भाई बहने विभिन्न प्रकार की कलाओं को लिए हुए हैं, आप भी अपनी कला के अंदर अगर आध्यात्मिकता को और दिव्यता को सम्मिलित करेंगे तो अवश्य ही दिव्य मानव को क्रिएट करने में आप सभी का भी बहुत बहुत अमूल्य योगदान रहेगा और ये भारत पुनः वही स्वर्ग देवी देवताओं की धरा बन जाएगी। तो उस परम श्रेष्ठ सर्वोच्च परम कलाकार के लिए, जिन्होंने दिव्य मानव की रचना की, उनके लिए हम क्या कहते हैं, कौन है विराट रचनाकार, कौन है विराट रचनाकार, रचा है जिसने इतना सुंदर विशाल ये संसार, कौन वो विराट रचनाकार। आंख बिना जो सब कुछ देखे, वैसे आंख नहीं है परंतु हजारों आंखें कही जाती भगवान की। आंख बिना जो सब कुछ देखे, रंग बिना जो रंग भरे, ऐसी अद्भुत प्रभु शक्ति का वर्णन कैसे कोई करे। निराकार वो चित्रकार है सबका सर्जनहार, कौन वो विराट रचनाकार, कौन वो विराट रचनाकार। तो आपको आने वाले इन 2-3 दिनों के अंदर उस परम कलाकार परमात्मा पिता का संपूर्ण परिचय प्राप्त होगा और स्वयं का भी संपूर्ण परिचय प्राप्त होगा कि हम उस परम कलाकार के हम सभी भी छोटे छोटे कलाकार बच्चे हैं और कैसे हम अपने अंदर अब दिव्यता को भरें, आगे बढ़ें। तो अभी अभी हमने देखा कि हमारे प्यारे भाई हरीश मोयल जी के द्वारा बहुत ही सुंदर दिव्य गीतों की प्रस्तुति हुई, हम सभी प्रभु याद में मगन हो गए। और उसके बाद हमने देखा कि हमारी प्यारी प्यारी छोटी बहनों ने अपने सुंदर नृत्य के द्वारा आप सभी का वेलकम किया, स्वागत किया। और हमारे मधुर वाणी ग्रुप के हमारे बहुत ही अनन्य रत्नों ने बहुत सुंदर गीत गा करके आप सभी का दिल से वेलकम किया, स्वागत किया। तो मैं भी अपनी ओर से आप सभी का भी बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। तो सर्वप्रथम हमारे परम आदरणीय राजयोगिनी चंद्रिका दीदी जी, जो कि आर्ट एंड कल्चर विंग के चेयरपर्सन हैं और यूथ विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं, और उनके दिशा निर्देश के अंदर ये आर्ट एंड कल्चर विंग बहुत ही ऊंचाइयों को छू रहा है। बहुत सुंदर प्रोजेक्ट परमपिता परमात्मा परम कलाकार ने आदरणीय दीदी जी के माध्यम से क्रिएट करवाया, जिसका नाम है वैश्विक संस्कृति प्रेम शांति सद्भावना, यूनिवर्सल कल्चर लव पीस एंड हार्मनी। तो प्रोजेक्ट 18 फरवरी 2024 को अहमदाबाद गांधीनगर के राजभवन में गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब के समक्ष वहीं पर उसी हॉल में उसका लॉन्चिंग किया गया। तत्पश्चात भारत के 12 राज्यों के अंदर इस प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग हुआ है और बहुत विशाल ढंग से बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, जगह जगह पर इस विषय को लेकर के प्रेम शांति सद्भावना, जो कि बहुत ही गहरी और सुंदर वैल्यूज हैं और मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं इनको धारण करना, तो उस विषय में बहुत ही विशाल रूप से सेवा हो रही है। और मैं कहूंगी कि इस विंग को विंग लग गए हैं, यानी हम उड़ने लग पड़े हैं जब से आदरणीय दीदी जी ने इस विंग को संभाला है। तो मैं दीदी जी के लिए कहना चाहूंगी कि मानवता की साक्षात प्रतिमा, ज्ञान रस की पावन सरिता, दृष्टि में जिनकी ऊर्जा का आदित्य है, वाणी में जिनकी अनुपम लालित्य है, तो ऐसे मधुर वाणी के धनी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे परम आदरणीय राजयोगिनी चंद्रिका दीदी जी, आपका हम सब मिलकर के बहुत 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 तहे दिल से अभिवादन करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ हमारे आदरणीय राजयोगिनी बीके प्रभा दीदी जी, जो कि ज्ञान सरोवर एकेडमी के आप निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, सौभाग्य से आज आप हमारे बीच में हैं, मंच पर उपस्थित हैं। तो आपके लिए मैं कहना चाहूंगी कि कृति को पावन बनाना आप से सीखे कोई, कृति को पावन बनाना आप से सीखे कोई, जीवन में सद्गुणों को सजाना आप से सीखे कोई, भगवान को अपना बनाना
आपसे सीखे कोई, आपसे सीखे कोई, तो आपका भी बहुत 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 तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे आदरणीय भ्राता राजयोगी बी के मोहन सिंगल भाई जी, जो कि चेयरपर्सन हैं साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के, अभी थोड़े ही समय में आप देखेंगे कि जितने भी ब्रह्मा कुमारीज के कैंपस हैं, भले ज्ञान सरोवर है, पांडव भवन है, शांति वन है या अन्य स्थान है, तो आप सभी के बारे में बताते हुए ऐसा चित्रण करेंगे, ऐसा इस ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे कि ऐसा हमें लगेगा कि उन सभी स्थानों की हम सब सैर कर रहे हैं और उन सभी की यात्रा करते हुए जैसे कि अपनी आंखों से देख रहे हैं, विजुलाइज कर पा रहे हैं। तो ऐसे दिव्य विभूति हमारे आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल भाई जी का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता बी के दयाल भाई जी, जो कि वाइस चेयरपर्सन है आर्ट एंड कल्चर विंग के, और बहुत ही खुशी से इन सेवाओं को संभालते हैं और रिसेप्शन में आते ही खुले दिल से, खुले हृदय से, खुले बाहों से सबका बहुत बहुत प्यार भरा अभिनंदन करते हैं और आपकी मुस्कुराहट को देख करके हर एक खुश हो जाते हैं और बहुत सुखद महसूस करते हैं। तो ऐसी दिव्य आत्मा का भी हम अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। और मुख्य रूप से आज की हमारे इस स्वागत सत्र के जो चीफ गेस्ट हैं, सिस्टर प्रोफेसर समिता सहस्रबुद्धे जी, आप वाइस चांसलर हैं राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी के, तो आपको भी हम सुनेंगे, आपसे भी हम लाभान्वित होंगे। तो आज आप इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं, तो हम भी मुख्य रूप से जोरदार तालियां बजा करके आपका बहुत बहुत अभिवादन और अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हमारे ब्रदर जुगनू जी, जो जुगनू की तरह जगमग जगमग करते हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं मुंबई से, और हमारे भ्राता ऋषिकेश चूरी जी, जो कि चेयरपर्सन है ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन के, आपके नाम में ही ऋषि शब्द समाया हुआ है जो कि त्याग और तपस्या का, पवित्रता का सूचक है। तो ऐसी दिव्य विभूति भी हम सबके बीच में है। और हमारे भ्राता हरविंदर मनकर जी, जो कि दिल्ली से कार्टूनिस्ट इलस्ट्रेटर फिल्म डायरेक्टर हैं, आप भी हमारे मध्य पधारे हैं। और हमारे सिस्टर बी के अंजलि अरोरा जी, जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं मुंबई से, जो कि हर साल कॉन्फ्रेंस में आते हैं आर्ट एंड कल्चर विंग की, सिर्फ अकेले ही नहीं आते परंतु और भी बहुत लोगों को, बहुत से अपने मित्रों को, और जो और आपके आसपास जो एक्टर्स हैं या कलाकार हैं उनको भी आप लेकर के अवश्य आते हैं। और ये सेवा भाव आपके मन में सदा बना रहता है कि बाबा की सेवा ये हो और ज्यादा से ज्यादा कलाकार आए इस कॉन्फ्रेंस में और लाभान्वित हों। और हमारे भ्राता राजयोगी बी के अनिल भाई जी, जो कि एक्टिव मेंबर हैं आर्ट एंड कल्चर विंग के, और हमारी प्यारी बी के तपस्विनी बहन, जो कि एक्टिव मेंबर हैं आर्ट एंड कल्चर विंग की और बहुत ही सुंदर ढंग से स्टेज का संचालन कर रही हैं। तो मंच पर सभी उपस्थित प्यारे भाई और बहनों का मैं हृदय से पुनः पुनः बहुत 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 स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। अगर किसी का नाम नहीं भी लिया गया तो सभी नाम सहित हमारा हृदय से अभिनंदन स्वीकार करें। और आप सभी भाई बहने जो दूर दूर से भारत के कोने कोने से आए हैं, तो आप सबके लिए तो मैं कहना चाहूंगी कि माला बनाई है मोती चुनकर, माला बनाई है मोती चुनकर, गुलदस्ता बनाया है फूल चुनकर, आप सबको भगवान ने यहाँ बुलाया है, लाखों करोड़ों में से चुनकर, लाखों करोड़ों में से चुनकर। बहुत से लोगों ने प्रोग्राम बनाया होगा, कई कारण बन गए होंगे, नहीं आ सके होंगे, और कोई ऐसे भी होंगे जिनका पहले से कार्यक्रम नहीं होगा लेकिन एंड टाइम पे उनका किसी तरह से कार्यक्रम बन गया होगा, तो लकीएस्ट सोल हैं। तो आप सभी पहुंचे हैं, फिर से आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है, ओम शांति।
प्रेम दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। हमारे भाई साहब मोहन भाई सिंगल जी, आप सभी को बताया कि भाई जी बहुत ही सुंदर रीति से अपने शब्दों के द्वारा हमारे जो सारे प्रांगण है उसके बारे में बताएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि आप वो सारा दृश्य देख रहे हैं। तो हमारे भाई जी के लिए ये कहना चाहूंगी, ज्ञान की ज्योति से जग को रोशन करते, दूरांदेशी और श्रेष्ठ संकल्प से सहयोग ये देते, निर्णय लेने की कला और सबको राह यह दिखाते, सब इनकी राह पर चलकर विजय है पाते। भाई जी हमारे वरिष्ठ भ्राता हैं, ONGC में आप इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे, वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद अब अपना पूरा समय संस्था के मुख्यालय में दे रहे हैं, साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के आप चेयरपर्सन हैं। इस कॉम्प्लेक्स के बारे में जो भी मेहमान यहाँ आते हैं उन्हें सुंदर रीति से शब्दों के द्वारा अवलोकन कराते हैं भ्राता मोहन सिंगल जी।
ओम शांति। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। मंच पर विराजित हमारे विद्वान वक्तावगण, आज के सभा की जो चेयरपर्सन चंद्रिका बेन जी और सभा में उपस्थित भारत के तथा बाहर से कुछ स्थानों से पधारे हुए आप सभी बहनों और भाइयों, मुझे विश्वास है कि जैसे ही आपने इस कॉम्प्लेक्स में प्रवेश किया होगा ज्ञान सरोवर में, तो आपको एक अद्भुत ही शांति का, शक्ति का और आनंद का अनुभव हुआ होगा, क्योंकि यह ज्ञान सरोवर अपने आप में एक बहुत ही अनोखा कॉम्प्लेक्स है। वैसे तो आप सभी यहाँ जो पधारे हैं किसी न किसी संस्था के भाई बहन के परिचय के साथ पधारे होंगे, उन्होंने आपको निमंत्रण दिया होगा और आप आए हैं, इसलिए मैं नहीं समझता कि संस्था का कोई विशेष परिचय आपको दिया जाए, क्योंकि उस परिचय से तो आप पधारे ही हैं। लेकिन इस ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स का मैं चाहता हूँ कुछ संक्षिप्त परिचय आपको अवश्य मिले, क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स जो है, जिस भवन में, जिस हॉल में आप बैठे हैं, इसका नाम हारमनी हॉल है। विशेष इस लक्ष्य से इसका निर्माण किया गया था कि यहाँ जो भी कार्यक्रम हो वो हारमनी पैदा करे। बाहर की हारमनी की बात तो हम करते हैं, लेकिन सबसे पहले आवश्यक है हमारी अंदर की हारमनी, हारमनी बिटवीन अवर हेड, हार्ट एंड हैंड। ये अंदर की हारमनी अगर हो जाती है एस्टेब्लिश, तो बाहर की हारमनी स्थापन करना कोई मुश्किल कार्य नहीं रहता है। तो यहाँ जितने भी कार्यक्रम होते हैं सब होलिस्टिक नेचर के होते हैं, उन सब को इसी उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, और आज की ये कॉन्फ्रेंस भी जिसका विशेष लक्ष्य दिव्य मानव, परमात्मा की सर्वोच्च कलाकृति, तो हम सब चाहते हैं कि दिव्यता आए, तो इसीलिए इस लक्ष्य से इस टॉपिक के ऊपर ये जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो आयोजकों को मैं बहुत बहुत इसकी बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक विशेष टॉपिक का निर्माण किया और उसके ऊपर यह कार्य संपन्न कर रहे हैं। इस हारमनी हॉल की कैपेसिटी लगभग 1600 के करीब है, और यहाँ पर 15 से अधिक भाषाओं में ट्रांसलेशन की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि विश्व के लगभग 140 देशों से लोग यहाँ आते हैं और उनके कार्यक्रम होते हैं, इसलिए वो कार्यक्रम विशेष इसी लक्ष्य से होते हैं कि अंदर की हारमनी सब में पैदा की जाए। यह विशेष हॉल जो है इसके नीचे मेडिटेशन हॉल है और ये कॉम्प्लेक्स को संभालने के लिए हमारे लगभग जो 150-200 भाई बहने यहाँ पर ज्ञान सरोवर में रहते हैं उन लोगों की दिनचर्या प्रातः 3:30 बजे से शुरू हो जाती है और यहाँ के वातावरण में प्रवेश करते ही जो आपको शांति का एहसास हुआ होगा वो इसी कारण से हुआ कि यहाँ रहने वाले भाई बहनों ने इस वातावरण में इतने शांति के प्रकंपन पैदा किए हुए हैं कि जो भी इसमें आता है वो उसकी अनुभूति करता है। और इस कम्प्लेक्स में ही यहीं पर ही हमारे आर्ट गैलरी है, अपनी एक विशेषता को धारण भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की लगभग सभी जितनी संस्कृतियां हैं उनका उनमें चित्रण किया गया है और विशेष करके भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उसको उसमें मॉडल पिक्चर्स और इन सब के माध्यम से बड़ा अच्छा रीति से दर्शाया गया है। आप लोगों ने शायद आज देखा भी हो, न देखा हो तो आगे आने वाले दिनों में आप अवश्य उसे देखें। इसके साथ ही सामने ही एक सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर हायर लर्निंग, तो वहाँ पर लगभग 13 हॉल्स हैं 100 की कैपेसिटी से लेकर लगभग 250 की कैपेसिटी तक, और उसके अंदर विभिन्न कार्यक्रम हमारे होते हैं, वर्कशॉप होती हैं, हो सकता है संभवतः आपकी भी वर्कशॉप का उसमें आयोजन किया हो तो आप उसे देखेंगे। और वहाँ पर विशेष करके एक स्पार्क है, स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर, उसके अंदर आध्यात्मिक जितनी भी चीज़ें हैं हमारे ईश्वरीय ज्ञान की वो उन्हें बहुत अच्छी रीति से दर्शाया गया है। इसके बाद फर्दर जब ऑल डाउन जाते हैं तो डाइनिंग कॉम्प्लेक्स आता है, वो तो आपने देखा होगा जब से आज आए हैं, वो डाइनिंग कॉम्प्लेक्स भी अपने आप में अनोखा है और उसके अंदर भोजन की जो सुविधा उपलब्ध है, वैसे तो आप सब लोग यहाँ आए हैं वो भोजन की सुविधा आज से आपने लेनी प्रारंभ कर दी होगी, फिर भी यदि कोई ऐसी आवश्यकता हो किसी को विशेष प्रकार की सुविधा की तो कृपया अपने संबंधित टीचर इंचार्ज बहन से गाइड से आप उसका प्रबंध ले सकते हैं। फर्दर और डाउन जाते हैं तो हमारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं विष्णुपुरी आदि, और ये जो 35 एकड़ में बना हुआ कॉम्प्लेक्स है ये अपने आप में एक अनोखा इसलिए भी है कि जब ये बनाया गया था तो यहाँ पर एक भी पेड़ काटा नहीं गया था, पूरे सब प्रकार के यहाँ की फ्लोरा एंड फौना उसको मेंटेन किया गया, तो वो बाहर की नेचर और हमारी इंटरनल नेचर इन दोनों का इतना परफेक्ट यहाँ पर संगम है कि बाहर की नेचर जो जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश हम जानते हैं ये 5 तत्व हैं, लेकिन हमारी अंदर की नेचर जो है वो नेचर भी उसी प्रकार से बेहद की शांतिमय शक्तिमय बन जाए, तो उस रीति से ही इस कॉम्प्लेक्स को जो बनाया गया है जिससे कि आप जितने दिन रहेंगे और जब यहाँ जाएंगे तो उसी प्रकार की एक शांति शक्ति का एहसास करेंगे। सबसे विशेष बात एक ये है कि हमारे टाउनवर्ड पार्ट में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। वैसे तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हर जगह होते हैं सब जगह, लेकिन यहाँ प्लांट की एक विशेषता है कि जो किचन वेस्ट है, डाइनिंग वेस्ट है, जो ज्ञान सरोवर के वेस्ट है, उन सब को ही केवल वहाँ ट्रीट नहीं किया जाता, लेकिन सबसे मुख्य बात यह है आप सब जो आए हैं आपके थॉट्स को वो ट्रीट किया जाता है जिससे नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट हो जाए। और ये विशेषता यहाँ पर के सिवाय पूरे भारत में मैं समझता हूँ कहीं नहीं होगी, और इस कारण से आप जब यहाँ आए हैं इस लक्ष्य को लेकर के जाए कि मुझे जितने भी हमारे अंदर कमजोरियाँ हैं, निगेटिविटी है, उनको पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना है। इसीलिए एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं ये आशा करता हूँ कि आप सब जो यहाँ पर आए हैं इस कॉम्प्लेक्स का विशेष लाभ उठाएंगे 4 दिन तक, और वो बहनें जैसे भी आपको समय प्रति समय बताती रहेंगी उस प्रकार से योग और ज्ञान की अनुभूति के साथ अपने को रियली जो इसका लक्ष्य दिव्य मानव वो एक दिव्यता को धारण करके आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।
हमारे दयाल भाई जी जो 1986 में दुबई में उन्होंने इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से मेडिटेशन सेंटर पर जाकर मेडिटेशन सीखा और 1987 से वो ज्ञान सरोवर में आए और अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित रूप में दिया। आज आर्ट एंड कल्चर विंग के भाई साहब वाइस चेयरपर्सन है और भाई साहब अपने शब्दों के द्वारा सभी का स्वागत करें।
ओम शांति। इस संस्था में आप लोग आए हैं तो एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर कोई आपको ओम शांति करते हैं ना, जैसे नमस्ते का रिप्लाई नमस्ते होता है, वैसे ओम शांति का रिप्लाई ओम शांति होता है। तो मैं ओम शांति कहूंगा तो आप लोग भी ओम शांति जरूर कहना, क्योंकि आप लोग हो ही ओम शांति। अर्थ बाद में बताएंगे। ओम शांति। हाँ, सब लोग अपने मुखारविंद से मन से कहें ओम शांति। इसका मतलब होता है आई एम अ पीसफुल सोल, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। आप में से कोई क्रोध स्वरूप आत्मा है? देखो जब नहीं है तो बोलना चाहिए ना ओम शांति, ठीक है? ये महामंत्र याद रखना। मंच पे हमारे सारे वरिष्ठ भाई बहनों को प्रणाम, सभा में उपस्थित बहुत बड़े बहुत कला के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत काम किया है, नामांकित, मैंने उनके बायोडाटा पढ़े हैं तो एक एक के बायोडाटा 5-5, 6-6 पेज के हैं, और हर एक फील्ड में, चाहे एक्टिंग के फील्ड में हो, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता दूं सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से इस ग्रुप में करीब 30 मेंबर्स आए हैं। ताली बजाइए। पहले हम लोगों को 3 लोगों को फिल्म इंडस्ट्री से लाने के लिए, 5 लोगों को फिल्म इंडस्ट्री से लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, और अभी समय ऐसा आया है कि ये जागृति फैल गई है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ऐसी जगह है जहां पे अनेक प्रकार के कलाओं का संग्रह होता है, चाहे लेखन कला हो, स्टोरी लिखने वाले हो, डायरेक्ट करने वाले हो, म्यूजिक देने वाले हो, एक्टिंग करने वाले हो, डेकोरेशन वाले हो, सेट बनाने वाले हो, हेयर डिजाइनर हो, सभी कलाओं का संग्रह हम लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। तो सभी प्रकार के कलाकार और भारत के विभिन्न कोनों से भी सब लोग अपने कला के लिए या अपने जीवन को चलाने के लिए, अच्छा धन कमाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसका कारण यही है कि हमने सुना था और थोड़ा थोड़ा ऐसे कहीं पिक्चर में या स्टोरी में देखा था कि लखनऊ में एक शौक होता है, वो क्या होता है, वो लोग कबूतर पालते हैं और छत के ऊपर दाना डालकर कबूतर की संख्या बढ़ाते रहते हैं। फिर क्या करते हैं, एक अच्छा कबूतर ट्रेन करते हैं और वो कबूतर को उड़ा देते हैं। वो कबूतर हुई घूमता है और शहर के दूसरे कबूतरों को लेके आता है अपने छत पे। अब ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, बचपन में सुनी थी, और ऐसे कबूतर अभी बाबा के तैयार हुए हैं जो जाके उड़ते हैं औरों को लेकर आते हैं। तो ऐसे कबूतर भाई बहनों के लिए ताली बजाइए। और ये कबूतर हमारी संख्या भी बढ़ते जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि किसी का नाम लो किसी का नहीं लो, आप लोग सार में समझ गए होंगे। तो ये बहुत बड़ी, क्योंकि समय की भी पुकार है, बहुत बड़ा समय रोल प्ले करता है। कि अब देख रहे हैं हलचल सब तरफ हो रही है, हर फील्ड में हलचल हो रही है, तो हलचल में क्या चाहिए, कोई पकड़ चाहिए ना, गिर नहीं जाए इसलिए कोई पकड़ चाहिए ना। तो पकड़ क्या है, किसको पकड़ेंगे, कौन है ऐसा जिसको पकड़ने से हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। इज देयर एनी ह्यूमन बीइंग, कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग है, कोई ऐसा व्यक्ति है, तो वो है पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा। तो आप लोग सब किस लिए आए हैं, उसको पकड़ने के लिए आए हैं। तो मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस, अच्छे से पकड़ना। और जिसने पकड़ लिया वो क्या हो गया, तर गया, ठीक है ना। और एक बात मैं छोटा सा परिचय देता हूं, आप लोग जितने भी भाई बहने आए हैं, आप लोगों ने इस संस्था को बहुत छोटा नाम सुना, ब्रह्मा कुमारी। कोई कोई बड़े बड़े स्पीकर आते हैं हमारे पास में, राजनेताएं आते हैं, ब्रह्मा कुमारी को ब्रह्म कुमारी कर देते हैं, ब्रह्म कुमारी ऐसी है। अब लोगों को लगता है ब्रह्म में डाल देते हैं क्या ये लोग, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा के कुमार और कुमारियों का ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ध्यान से सुनिए, ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आप एक विश्वविद्यालय के कैंपस में आए हैं, राइट। और ईश्वरीय विश्वविद्यालय यानी विश्वविद्यालय में कौन आते हैं, स्टूडेंट। तो हम लोग कौन है, स्टूडेंट है। क्या पढ़ने आए हैं, या कौन सा विषय सिखाते हैं, हिंदी इंग्लिश मराठी गुजराती स्पेन मैथमेटिक्स साइंस, ये सिखाएंगे। ये सिखाने वाले तो बहुत स्कूलें हैं दुनिया में, और फिर भी ऐसे सीख के भी बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तेरा मेरा करते हैं, ठीक है ना। फिर काय के डॉक्टर, उन्होंने अपने फील्ड के डॉक्टर बने, लेकिन जीवन को चलाने के लिए जिन गुणों की हमको आवश्यकता है उसके डॉक्टर यहां बनाए जाते हैं। अब यह है स्कूल और यह है क्लास। अब क्लास में आप लोग भी इसके पहले स्कूलों में गए हैं, है ना, गए ना, ऐसा तो कोई नहीं स्कूल में नहीं गया। तो स्कूल में कहां बैठना चाहिए, क्लास में कहां बैठना चाहिए, आगे बैठना चाहिए कि पीछे बैठना चाहिए। पीछे बैठने वालों को क्या बोलते हैं, बैक बेंचर्स। तो मेरे प्यारे बैक बेंचर्स, प्लीज कम फॉरवर्ड, आइए आगे आगे बैठिए, आगे आगे बैठिए। अगर आप लोग आगे नहीं आएंगे, कल मैं पीछे की सीट निकलवा दूंगा। वेरी गुड। स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं ना, तो जो अपने स्कूल कॉलेज में भी पीछे बैठा होगा ना, वो भी यहां पीछे बैठेगा, क्योंकि उनको पीछे बैठने की आदत है। तो आगे आके बैठिए। ऐसा ज्ञान परमपिता परमात्मा का और कहीं नहीं मिलेगा। हम सचमुच बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो यहां परमात्मा खुद पढ़ाते हैं। आप में से शिवानी बहन जी को बहुत सुनते होंगे लोग। मैं रिसेप्शन में सेवा करता हूं, दिन भर मेरे पास टूरिस्ट आते रहते हैं, वो कहते हैं हम शिवानी बहन को सुनते हैं। 80% टूरिस्ट कहते हैं हम शिवानी बहन को सुनते हैं। कब से सुन रहे हैं, बहुत समय से सुन रहे हैं, बस इधर से सुनते उधर से निकाल देते, अंदर जाता ही नहीं कुछ। तो सिर्फ सुनना ही सफिशियंट नहीं है। शिवानी बहन शिवानी बनी कैसे, शी इज ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। हम सब स्टूडेंट है और पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा। उनकी मम्मी ने उनको कहा, शिवानी बहन की मम्मी को, हमको भगवान पढ़ाते हैं, मैं सेंटर जाती हूँ, मुरली सुनने। उसको हंसी आई मम्मी की बात के ऊपर, बोले आपको भगवान फ्री बैठा है पढ़ाने के लिए, उनके लाइफ स्टोरी आप सुन लेना। तो अब वो खुद कहती है कि हाँ यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, सिर्फ थोड़ी सी बातों के लिए आपको ध्यान आकर्षित करूंगा। आज शाम को, अभी थोड़ी देर के बाद में प्रोग्राम खत्म होने के समय, आपको डायरी पेन की सौगात मिलेगी। डायरी पेन की सौगात किसको मिलती है? स्टूडेंट को। तो उसको बगल में दबा के या कमरे में छोड़ नहीं देना, उसको आपको यूज करना है। और रोज क्लास में जो अच्छी अच्छी बातें आपको सुनाई देती है उसको नोट करना है। लेट्स गो बैक टू द स्टूडेंट लाइफ। हम कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो यहां आपको कोई चिंता नहीं है, न खाने बनाने की चिंता है, हाँ खाना खाने की चिंता है थोड़ी सी, हाँ, और कोई काम करने की चिंता नहीं है। बस पढ़ाई करो, खाना खाओ, एंजॉय करो, कैंपस घूमो फिरो और पढ़ाई करो। ये चार दिन आप जितना पढ़ाई करेंगे, जितनी क्लासेस अटेंड करेंगे, उतना सुख पाएंगे। इफ यू रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एंड फील द सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सुख किसको कहते हैं? सुख अलग है, सुख की फीलिंग आपको कैसे आएगी? जितना आप इस ज्ञान को सुनेंगे, उसमें का आपको इस ज्ञान का और अर्जन करने का आपका मन होगा, उतना आपको सुख मिलेगा। क्योंकि ज्ञान किसका है? सुख के सागर का है, उसके पास सुख के सिवाय कुछ नहीं है। किसी ने कहा है दुख का सागर है, किसी ने कहा गुस्से का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। और कल का दिन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। हम लोगों ने प्रोग्राम इस तरीके से बनाया है कि कोई सिंसियर स्टूडेंट अगर एक दिन भी पूरे क्लासेस अटेंड करेगा, 50% जीत जाएगा एक ही क्लास में, एक ही दिन में। तो कल सुबह का जो आपका मॉर्निंग का सेशन है आत्मा का परिचय, और उसके पहले 6 बजे से 6:30 बजे तक फिजिकल एक्सरसाइज भी थोड़ी सी कराएंगे यहाँ पे। तो आप लोगों के प्रोग्राम में 6:30 से टाइम है, लेकिन आप 6 बजे से यहाँ पर आ जाएंगे। सुरेश भाई है, वो आपको थोड़ा योगाभ्यास कराएंगे, थोड़ा एक्सरसाइज कराएंगे। 6:30 से 8 बजे तक का जो सेशन है एवरीडे का, वो गोल्डन, मैं तो कहता हूँ डायमंड सेशन है, वो कभी मिस नहीं करना। और कल शाम को भी, उद्घाटन में तो आप लोग रहोगे, शाम को भी परमात्मा का परिचय है, उसके बाद में योगाभ्यास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। कुछ हमारे सीनियर्स एक दिन के लिए आए हैं, कोई 2 दिन के लिए आए हैं, तो उनकी कोई मजबूरी होगी। लेकिन आप लोग जो 4 दिन के लिए आए हैं, आपके घूमने फिरने का भी समय लगाया हुआ है। सबसे पहले आप अपने टाइम टेबल को अच्छे से पढ़ लेना, फाइल आपको पढ़ने के लिए दिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम टेबल, एवरी डे का टाइम टेबल। उसमें आपको घूमने का भी रखा है 3rd डे, तो आपको क्लास छोड़ के घूमने के जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक, ओम शांति।
ओम शांति। हमारे डॉक्टर स्मिता सहस्रबुद्धे जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, शी सिक हर म्यूजिकल ट्रेनिंग फ्रॉम हर फादर डॉक्टर पीएल गोडकर, हु वाज ए वेल नोन आर्टिस्ट ऑफ ग्वालियर घराना। At present, she has been appointed as a Vice Chancellor of Raja Mansingh Tomar Music and Arts University, Gwalior. Prior to that, she was Head of Department of Music at Government KRGPG Auto College, Gwalior, MP. She is Union Advisor from 2009 onwards for conducting the Union election of approximate 12,000 students. She is holding 32 years of experience of teaching undergraduate and postgraduate students. She is a gold medalist in BA at Rewa. She is also a gold medalist in MA in music vocal in 1993. She is a PhD in 1988 from APS University. She is a Sangeet Prabhakar in vocal, Kathak dance and sitar from Prayag Sangeet Samiti, Allahabad. Hamare Mananiya Smita Sahasre Buddha Ji, Doctor, aaye, ne shabdon ke dwara sabko labhanit karenge.
Om Shanti. सबसे पहले उस परमपिता के श्री चरणों में वंदन करती हूँ. मंच पर उपस्थित समस्त सम्माननीय जनों को मेरा सादर प्रणाम. मंच के सामने बैठे सुदूर प्रदेशों से आए श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कलावंतों कलाकारों को मैं उनकी कला के साथ नमन करती हूँ. और जिस तरह का यहाँ क्रम दिया गया था उस क्रम में परिवर्तित करके मुझे यहाँ कुछ कहने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए संचालिका महोदया का भी धन्यवाद करती हूँ. और इस आयोजन में उपस्थित होने का अवसर दिया इसलिए भी इस संपूर्ण आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. जब इस आयोजन की जानकारी मुझे मिली तो विषय सुनकर ही मैं बहुत प्रभावित हुई. परम कलाकार की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति दिव्य मानव. हरीश जी सामने बैठे हैं, एक गीत की पंक्तियां हैं, जिसकी रचना इसकी सुंदर वो कितना सुंदर होगा. आपको शायद याद हो ये फिल्मी गीत है, बहुत पुराना. तो वो परमात्मा स्वयं एक चितेरा है, सर्वश्रेष्ठ कलाकार है. प्रकृति पे सब जगह जो छिटका पड़ा है वो उसकी अनुपम कृति है. और उस अनुपम कृति में जो सर्वश्रेष्ठ कृति है वो मानव है. मानव सर्वश्रेष्ठ क्यों, ये तो आप सभी जानते हैं. भावनाएं, संवेग, सुख दुख, चिंता, आवेग, स्मरण, सोचना, प्रगटीकरण, ये कितनी सारी बातें, कितनी सारी विशेषताएं उस परमपिता परमात्मा ने इस दिव्य कृति में दी है, जो सृष्टि में इस कृति को सर्वश्रेष्ठ भी बनाता है. तभी तो हम कहते हैं कि मानव के अंदर जो बातें हैं, मानव के अंदर जो विशेषताएं हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो अन्य सृष्टि के जीवों के पास नहीं है. सबसे बड़ी बात होती है संप्रेषण की, बात अपनी बात कहने की शक्ति, विचारों का आदान प्रदान. ये सारी चीजें मानव को उस दिव्य परमात्मा ने दी हैं जो उसको श्रेष्ठ बनाता है. अब अगर हम कला की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब तो कलाकार हैं ही. मैं भी संगीत की एक छोटी सी विद्यार्थी हूँ, मैं कलाकार नहीं हूँ, विद्यार्थी हूँ और लगातार सीखते रहती हूँ. तो कलाएं जो हैं वो हर मनुष्य के पास होती हैं, ऐसा मुझे लगता है. अलग अलग रूप में होती हैं. आप गाते हैं तो आपके लिए कोई लिखता है, कोई वाक्पटु होता है, कोई चित्रकारी, तरह तमाम तरह की कलाएं. हमारे अगर हम दर्शन को देखें तो उसमें भी कई सारी कलाएं हैं. और ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य हम मानेंगे कि हम भारत देश के निवासी हैं और यहाँ कला को षट दर्शनों में माना गया है, यानी दर्शन का एक भाग कला है. ये ललित कलाएं, प्रदर्शनात्मक कलाएं या जो मूक कलाएं होती हैं, जैसे वास्तुकला हुई, मूर्तिकला हुई, ये लंबे प्रयास के बाद बनती हैं, फिर प्रदर्शित होती हैं. कुछ कलाएं होती हैं जो मंच से डायरेक्ट प्रदर्शित हो जाती हैं. तो ये सारी जो कलाएं हैं इनको फाइन आर्ट्स या ललित कला की श्रेणी में रखते हैं, और ये भी उस परमपिता परमात्मा की मानव को दी गई सबसे बड़ी देन है कि वो इन ललित कलाओं को ग्रहण कर सकता है अलग अलग रूपों में, अलग अलग मानव के अंदर। जो आप इतने सारे लोग बैठे हैं, सब अलग अलग कलाओं के ज्ञाता हैं। एक ही व्यक्ति में सारी कलाएं हों ऐसा नहीं होता। एक को उस परमात्मा ने चुन लिया कि ये कला इस व्यक्ति के अंदर आएगी, तो वो कला और वो कलाकार उसी में आगे बढ़ता जाता है। चूंकि दर्शन की बात होती, यानी कलाओं को हम दर्शन से जोड़ते हैं, तो जब दर्शन जुड़ता है, भारत का दर्शन जुड़ता है, तो अपने आप आध्यात्मिकता जुड़ जाती है। क्योंकि दर्शन ही तो हमें राह दिखाता है कि हम उस आध्यात्मिकता की ओर बढ़ें। तो जब कला और दर्शन जुड़ा और फिर उसमें स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता का पक्ष जुड़ा, तो आप सोचिए उसका प्रगटीकरण कितना बड़ा होगा, उसमें कितनी शक्ति होगी, उसमें कितनी ताकत होगी, उस रचनाकार की रचना धर्मिता कितनी श्रेष्ठ होगी कि वो सीधा सीधा आध्यात्मिकता से प्रेरित होकर काम करता है। करना कुछ नहीं है, हम कलाकारों को, आप जैसे लोग जो श्रेष्ठ कलाकार हैं, उनको छोटे छोटे प्रयास करने हैं ताकि हम आध्यात्मिकता से कला को जोड़ सकें, और परमात्मा ने जो दिव्य स्वरूप हमको मानव के रूप में दिया है और कलाकार के रूप में दिया है, उसका सही उपयोग कर सकें। आज का जो दौर चल रहा है बहुत विचित्र दौर है, और ये वेदना भी है कि कलाकार जो मोस्ट संवेदनशील, जिसको हम कहते हैं सर्वाधिक संवेदन, क्योंकि अपनी संवेदनाओं को ही, अपने भावनाओं को ही वह प्रकट करता है अपनी कला के माध्यम से, उसमें आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं है, प्रतिद्वंद्वता है। उस प्रतिद्वंद्वता को मिटाना है, तब हम उस कलाकार कलाकारी को सही रूप दे पाएंगे। हमारे अंदर के अहंकार को मिटाना है, प्रेम करुणा इसके साथ अगर आप उस कला को प्रस्तुत करेंगे, तो आप सच जानिए, सच मानिए कि आप स्वयं भी बहुत आनंदित होंगे, अंदर से प्रसन्न होंगे। ये छोड़ दीजिए कि उसकी कृति मेरे कृति से अच्छी है, कोशिश ये करें कि उसकी कृति को मैं उससे भी और अधिक बना सकूं। यानी जो भी आपको सामने, आप सबके बीच दिखाई देता है, तो आगे आगे बढ़ने की कोशिश अवश्य करनी है, लेकिन अपने नैतिक मूल्यों के साथ, अपनी आध्यात्मिकता के साथ, तभी हम उस परमपिता की जो हमें सर्वश्रेष्ठ देन प्राप्त हुई है उसको लेकर प्रस्तुत हो सकेंगे। अब जहां कला और कलाकार की बात आती है, तो एक बात और आती है, वो है गुरु और शिष्य की। क्योंकि ये जितनी सारी कलाएं अभी मैंने बताई, या आप सभी जानते हैं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, उसमें एक परंपरा लाना बहुत जरूरी है। अभी मैंने जैसे बायोडाटा में बताया, तो परंपरा को बनाना बहुत जरूरी है। तो हम कलाकारों का, आप सबका ये दायित्व है कि एक श्रेष्ठ गुरु बने, श्रेष्ठ कलाकार बने, श्रेष्ठ गुरु बने, और जब आप श्रेष्ठ गुरु की ओर अग्रसर होंगे, तब आप में आध्यात्मिकता होना, मानसिक संबल होना, शक्ति होना, ये बहुत आवश्यक है। तब आप अपनी रचना धर्मिता को, जो आपकी आगे की पीढ़ी आ रही है, क्योंकि मैं जिन लोगों को देख पा रही हूं, वो उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व अभी कर रहे हैं जिसके आगे एक पीढ़ी खड़ी हुई है, उसको हमको सिखाना है, उसको आगे लाना है, भारत का दर्शन बताना है, भारत की आध्यात्मिकता को सिखाना है कलाओं के माध्यम से। और इसलिए ये आवश्यक है कि हम एक परंपरा को बनाएं। आप जिस कला को लेकर चल रहे हैं, उसमें परंपरा को लेकर चलना आगे बहुत जरूरी है, तभी तो जो हमारी कला है वो लंबे समय तक, लंबी दूरी तक जाएगी। अन्यथा आपने अपनी कला और कलाकारी को किया और किसी दूसरे को नहीं दिया, तो वो संकुचित हो जाएगा। जैसा ठहरा हुआ पानी बदबू मारता है, उसी तरह आपकी कला भी कुंठित हो जाएगी। आपको ये आवश्यक है कि आपको परमात्मा ने इतनी दिव्य शक्ति ये प्रदान की है रचना धर्मिता की, कलाकार होने की, उसको आप सर्वत्र प्रसारित और प्रचारित करें, पर प्रेम भाव से। कहीं अहंकार, द्वेष, आपसी वैमनस्य की भावना आनी ही नहीं है। और इस परंपरा को आप एक गुरु के नाते अपने शिष्यों को भी प्रदान करें, ऐसा मैं सोचती हूं। आप सबकी अनुमति हो तो एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करूंगी कि क्या कलाकार के लिए क्या होना चाहिए। हालांकि यहाँ अभी मुझे स्वर वगैरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी बिना उसके ही आप भावों को समझिए। गीत के बोल हैं, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। ये अज्ञान है, हमारी कुंठा है, हमारा मानसिक अवसाद है कि हम में इतनी कला तो है, हम में रचना धर्मिता तो है, हम में वो गुण तो है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपकी जो अंदर की कुंठाएं हैं, वो आपके जो रचना है उसमें दिखाई देती है। कहते हैं अगर किसी गायक का सुर नहीं लगा तो उसके अंदर की वो भावना है। आप प्रेम से, करुणा से, ममत्व से, आपसी भाईचारे से उस कलाकार को, उस कला को प्रदर्शित करिए, निश्चित रूप से वो श्रेष्ठ कलाकृति के रूप में उभरेगी। तो उस गीत को मैं प्रस्तुत करती हूं।
ज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है, या तो वो अज्ञान अपना, या तो वो अभिमान है। नफरतों के जहर से प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से। उम्र की मर्यादा न तोड़े अपनी सीमा में रहे, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे आपकी कलाकार वृत्ति को, कलाकार या कला होने की प्रवृत्ति को ठेस पहुंचे। हम हमारी सीमाओं में रह के काम करेंगे। हम कलाकार हैं, कला की सौंदर्यानुभूति को हमें प्रकट करना, यानी एस्थेटिक वैल्यूज को मॉरल वैल्यूज से हमको जोड़ना है। इसलिए उम्र की मर्यादा न तोड़े अपनी सीमा में रहे, ना करें
अन्याय ना अन्याय औरों का सहे, कायरों से दूर हो वीर धै वालों की ओर ले चलो अज्ञान के अंधेर से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो असत्य की दीवार से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो अज्ञान के अंधेरों से अज्ञान के अंधेरों से अज्ञान के अंधेरों से।
तो आइए उस परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि हमें कला की बुद्धि दे, हम कला को आगे बढ़ाएं और उसका निरंतर शीर्ष की ओर ले जाने का प्रयास करें। आप सबने बुलाया, अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जो आयोजन की सफलता के लिए मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैडम का हम सभी बहुत बहुत करतल ध्वनि से उनको धन्यवाद करते हैं। मैडम को हम दिव्य सौगात और प्रसाद से चंद्रिका दीदी उनको उनका आतिथ्य कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर, कैसे परम कलाकार के सभी हम कला के धनी हैं। हमारे हर एक के अंदर परमात्मा ने कोई ना कोई कला विशेषताएं भरा हुआ है और मैडम ने बहुत सुंदर गीतों के द्वारा भी सभी को लाभान्वित किया। तो संस्था की ओर से दीदी उनको गिफ्ट और शॉल देकर उनका धन्यवाद करते हैं। इसके पश्चात हमारे बॉलीवुड कॉमेडियन जुगनू जी, हिज ओरिजिनल नेम इज अशोक वैद्य, ही वॉज वर्क्ड इन मोर देन 700 फिल्म्स, हिंदी पंजाबी बोथ द लैंग्वेजेस, इज वर्किंग इन फिल्म इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 70 years। और जोरदार कल्तर ध्वनि करे प्लीज। He has worked with all superstars like Dharmendra, Rajesh Khanna, Jitendra, Vinod Khanna, Shashi Kapoor, Shami Kapoor, etc. like Khiladi with Akshay Kumar, Janam Kundli with Jitendra. Beyond this is hit films was Darj in 1996, Dial 100 in 1982, Chote Mian Bade Mian with Amitabh Bachchan and Govinda, जॉनी मेरा नाम विद देवानंद एंड दीवाने में दीवाने में एंड मैनी मोर। तो हमारे भाई साहब जुगनू जी, हम उनको अभी उनके शब्दों के द्वारा हम उनका गुड विशेस लेंगे। जुगनू जी,
ओम शांति। अब मैं कुछ शब्दों का उच्चारण अगर मैं थोड़ा गलत कर लूं, क्योंकि आपके प्रोग्राम, आपका स्टेज और मेरे स्टेज में जमीन आसमान का फर्क है, तो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं। और दयाल जी का मैं बहुत एहसान मंद हूं और अंजलि अरोड़ा जी जिन्होंने मुझे स्पेशल सिर्फ एक बार बोला कि आपको माउंट आबू जाना है, बस मैंने बोला हां जाना है। अब इसके पीछे जो राज है वो मैं बताने जा रहा हूं। दयाल जी आप सुन के हैरान होंगे, इस हॉल के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं मैं सबसे पुराना स्टूडेंट हूं आपकी यूनिवर्सिटी का। 70 साल पहले मैं आपकी यूनिवर्सिटी में आया था, पर नलायक था, पढ़ने लिखने में भी नलायक था, बोलने में भी नलायक था, तो मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। मैं माफी चाहता हूं, पर मेरी किस्मत में यह लिखा था कि जब तू 80 साल का होगा तो फिर तेरे को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगी। तो मैं एडमिशन के लिए आपके पास रिक्वेस्ट करने आया हूं कि मुझे आप इस यूनिवर्सिटी में फिर दाखिला दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ईमानदारी से आपकी सेवा कर सकूं। आपने मेरी बहुत सी पिक्चरें देखी होंगी, मैं हीरो नहीं हूं, मैं छोटा सा करेक्टर कलाकार हूं, कॉमेडियन हूं, स्टूडेंट बनता हूं, प्रोफेसर बनता हूं, क्लर्क बनता हूं, और आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने 109 पिक्चरों में लेडीज रोल किए हैं। अब शक्ल से तो मैं, ताड़ियां तो बजनी चाहिए ना, सुना थैंक यू। और आज इस शानदार जगह पे आकर, ब्रह्म स्वरूप जगह पे आकर, भगवान की जगह पे आकर, जब जब इस दुनिया के अंदर, गीता में भी कहा गया है जब कलयुग आएगा तो रावण पैदा होंगे, राम पैदा हुए तो रावण आया था, कृष्ण जी आए थे, कंस पैदा हुआ था, तो उन्होंने जब जब कष्ट आया दुनिया पे तो उन्होंने किसी ना किसी को भेजा, हमारे बाबा को इस दुनिया में इसलिए भेजा जो कि सोने के चम्मच, सोने की थाली में खाना खाने वाले। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूं, 1934, बड़ा बड़ा बिजनेस आपको सबको पता है, मैं ज्यादा इसको शॉर्टकट में बताऊंगा कि वो किस तरह इतने बड़ी अमीर रोल्स रॉयल्स उस जमाने में उनके पास थी, इंग्लैंड की क्वीन उनको एंटरटेन करती थी, पूरे सिंध के अंदर उनका नाम था, फिर भी पर कई लोगों ने धोखे दिए, किसी तरह से उनका दिल चंचल हो गया इस दुनिया से, क्योंकि भगवान का एक ऑर्डर आया था ऊपर से कि आपको इस दुनिया में जाना है। उस टाइम उन्होंने कोशिश की और उसके अंदर कई रावण आए, कई तकलीफें आई, पर वो डरे नहीं, वो बढ़ते गए। जब बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचे तो पाकिस्तान से पहले 3 साल पहले 1947 में पाकिस्तान बना था, फिर भी वो 3 साल वहां रहे, पर वो चाहते थे कि पूरी दुनिया के अंदर हमारा ब्रह्मा कुमारी का नाम हो, संदेश जाए, इस यूनिवर्सिटी का संदेश जाए। साहब वो 3 साल के बाद 1950 में बॉम्बे के लिए, माउंट आबू के लिए वहां से शिप पे बैठने लगे, तो वहां के जितने मुसलमान थे उन्होंने पैर पकड़ के रोए कि बाबा हम आपकी सेवा करेंगे, आप मत जाइए। पर उस उनको तो दुनिया में जाना था ना, दुनिया के अंदर आप सब जो बैठे हुए हैं, दुनिया के अंदर अपना काम करना था। वो बॉम्बे आए, कल मैं ब्रिज कोटी गया था, वहां की मैनेजमेंट मिस्टर चेतन साहब के पास, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि यहां एक बड़ा पत्थर लगाइए बाबा का, तो आपका होटल का नाम चल जाएगा, आपका होटल चल जाएगा। कहते हम तो होटल ही उनको देना चाहते हैं, हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि ये आप अपनी जगह ले लीजिए। मैं दयाल जी आपके आगे रिक्वेस्ट करता हूं, कल मेरी बड़ी डिस्कशन हुई और उनकी कंपनी ने के साथ मेरी फोन पे बात भी हुई, और उन्होंने कहा कि हम आज ही लिख के देने को तैयार हैं कि ब्रिज कोटी आप ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए। उसके बाद मैं पांडुरंग में गया, वहां दर्शन किए, मत्था टेका, शांति पाठ किया, दिल को बड़ी तसल्ली हुई। इस तरह करते करते साहब मैं जिंदगी के उस मोड़ पे आ गया हूं जिस मोड़ पे, जिस यूनिवर्सिटी से। आप ये बोलेंगे कि यूनिवर्सिटी में आप गए कैसे, लुधियाना के अंदर मैं रहता था, सिविल लाइन के अंदर आपका सेंटर था, तो वहां बहनें जो थी माताएं, मैं तोतला था, 8 साल का था, और मैं कुछ भी गाने गाता था, दुल्ली दंदा थेलिए जी दुल्ली दंदा, और कभी कुछ गान डांस करता था और कुछ भी करता था, वो मुझे प्यार से गोद में उठा लेती थी और मेरे लिए मिठाई लाती थी और मुझे खाना खिलाती थी और मेरा डांस देखती थी। पर मैं नलायक था, मैं समझता हूं मैं ही कुछ नहीं कर सका, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। और आज मुझे बाबा ने फिर बुलाया है, बाबा के आशीर्वाद से मैं आपके सामने खड़ा हूं। इस दुनिया में जहां जहां ऐसा नाम हो, ऐसी कला, ऐसी शिक्षा, ऐसा संदेश भगवान ने आपके थ्रू भेजा है, मैं कहता हूं उस भगवान के लिए, उस बाबा के लिए आप साले तारियों से उनका स्वागत करिए। और मैं जाते जाते ये बताना चाहता हूं कि बाबा ने कहा है कि आप और हम आत्मा हैं, मैं भी आपके सामने इंसान नहीं एक आत्मा हूं, और आप जब सब बैठे हुए हैं तो आप भी आत्मा हैं। तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप जरा पीछे मुड़ के देखिए बहन जी, पीछे मुड़ के देखिए, मैं आपको आपको कह रहा हूं, आपको कह रहा हूं, आप पीछे मुड़ के देखिए, बाबा आपके ऊपर खड़े हैं, देखिए ना, ये आप देखिए लाल ब्लाउज रुमाल वाले बाबा आपके पीछे बाबा खड़े हैं, ये देखिए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बाबा आपके बीच में खड़े हैं, बाबा यहां आशीर्वाद दे रहे हैं, बाबा ने ये जो दुनिया बसाई है इसी तरह आगे जाकर भगवान इसको बुलंदियों पे लेके जाए। और मुझे हर बार मौका मिले मैं आपकी सेवा करने के लिए यहां आऊं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ओम शांति।
सॉरी मुझे बीच में घुसने की आदत है, बहन नहीं करना। भाई साहब ने बताया ना, वो ऐसा हुआ था, अंजलि बहन ने मेरे को बोला था भाई साहब का थोड़ा परिचय दिया, और तो मुझे ऐसा लगा कि इनको इंटरेस्ट है, तो मैंने उनको बाबा की लाइफ हिस्ट्री, आप लोग भी सब खरीदना जरूर, मैं बोलना भूल गया, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी ब्रह्मा बाबा की लाइफ हिस्ट्री पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो हम पहले उसको गिफ्ट रैपिंग में देते थे, फिर पता नहीं कैसे वो सिस्टम बंद हो गया, तो उसमें से एक प्रति कॉपी मेरे पास थी, तो वो मैंने भाई साहब को बाई पोस्ट भेज दी। अंजलि बहन ने कहा कि उनको देखो तो बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने कहा ये पढ़ लेंगे तो बहुत, वो उन्होंने पढ़ी और वो ऐसा उनको परिवर्तन आया कि आज यहाँ पर आए और मेरे से वो डिस्कस करते हैं कि बाबा 50 में आए थे। मैंने कहा हाँ आए थे, मैंने खुद ने वो किताब 3-4 बार पढ़ी, एंड दैट बुक इंस्पायर्ड मी अ लॉट। उसके ऊपर से हमने एक ड्रामा भी किया था, मोनिका बहन ने वो ड्रामा बॉम्बे से लेके आए थे 25 कलाकारों के साथ में, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग भी किताब जरूर खरीदना, यहाँ से आप नीचे जाएंगे, अपना बुक शॉप है जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, या कहना लाइफ हिस्ट्री ऑफ ब्रह्मा बाबा, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, गुजराती में है, इन अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो। थैंक यू, ओम शांति।
अपने अनुभवों के द्वारा उन्होंने सुनाया कि कैसे बाल्यावस्था में ही उनको इस संस्था का परिचय मिला था, लेकिन बीच में वो भूल गए थे और अभी वापस आए हैं। तो भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हम आगे चलते हुए हमारी प्रभा दीदी जो हमारे इस ज्ञान सरोवर परिसर के डायरेक्टर हैं, पिछले 60 वर्षों से दीदी पिताश्री ब्रह्मा बाबा और दादी प्रकाशमणि जी से शिक्षा प्राप्त किया। दीदी जी बहुत ही छोटे उम्र में 13 वर्ष की आयु में इस संस्था में समर्पित रूप में समर्पित हो गए। पिछले 48 वर्षों से वो भरूच सेवा केंद्र के प्रभारी हैं और उनके 18 सेंटरों को संभालते हुए, और दीदी की सरल चित्त जो है वो तो उनके शब्दों के द्वारा आप नामांकित कर सकते हैं दीदी जी को। मैं
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमात्मा जो परम कलाकार है, उस परम कलाकार की आप सभी कलाकृतियां ज्ञान सरोवर में उपस्थित हैं, विशेष सम्माननीय मंच और इस विशेष सम्मेलन में पधारे हुए सभी कलाकार। आज का विषय हम सुन रहे थे कि परम कलाकार की आकर्षण मूर्त दिव्य कृति दिव्य मानव, तो दिव्य मानव आज का मानव और भविष्य का मानव क्या था, वो स्वयं परमपिता परमात्मा ने इस धरा पर आकर के हम सभी विशेष आत्माओं को ये बताया है कि मनुष्य का जीवन पहले देव समान था और आज का जीवन मनुष्य का क्या बन चुका है वो हम सभी जानते हैं। मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है वो श्रेष्ठ जीवन मिला है, तो इस श्रेष्ठ जीवन को हमें श्रेष्ठ किस आधार से बनाना है, श्रेष्ठ मानव हमें कैसे बनना है, क्योंकि श्रेष्ठ मानव जो है उनकी महिमा हम सभी गाते हैं कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म। तो हम सभी आत्माएं इस संसार रूपी नाटक के अंदर हम सभी यहाँ पर एक्टर बनकर के पार्ट बजाने के लिए आए, और जब कोई नाटक होता है और उसके अंदर जो पार्ट बजाते हैं तो हर एक कलाकार यही स्मृति में रखता है कि मैं ऐसा श्रेष्ठ पार्ट बजाऊं जिस पार्ट के आधार से मेरी महिमा हो या वंश मोर हो। तो हर एक के अंदर यही कलाकार के अंदर रहता है और वो अपनी कला को प्रदर्शित करता है। जैसे आगे कहा कि हर एक के अंदर अलग अलग कलाएं होती है, वैसे ही हर आत्मा के अंदर अलग अलग विशेषताएं होती हैं, जिन विशेषताओं के आधार से वो आत्माएं विशेष बनती हैं। लेकिन विशेष आत्माएं जो पहले श्रेष्ठ आत्मा थी, देव आत्मा थी, सतोप्रधान आत्मा थी, पवित्र आत्मा थी, आज वही आत्माएं क्या बन चुकी हैं वो हम सभी देखते हैं। कला के क्षेत्र में सभी आप कलाकार हैं, तो कलाकार का लक्ष्य यही होता है कि अपनी कला को दिखा करके औरों का मनोरंजन करना। तो आज औरों का मनोरंजन तो करते हैं, लेकिन आज हमारा जो मनोरंजन होना चाहिए है, वो मनोरंजन की जगह क्या हो जाता है, रंजन हो जाता है। आज हर एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर क्या चाहता है, हर एक ये चाहता है कि मेरा जीवन बहुत सुख में बने, मेरा जीवन शांत में बने, मेरा जीवन श्रेष्ठ बने। ये जीवन हमको मिला हुआ है, वैसे भी कहते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ जीवन है, तो ये दुर्लभ जीवन जो हमको मिला है, और हर एक ये चाहता है कि मेरा जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रहे। लेकिन जितना व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठता लाना चाहता है, उतना हम देख रहे हैं कि मनुष्य श्रेष्ठता के बजाय और ही मनुष्य का जीवन जो श्रेष्ठता होनी चाहिए वो श्रेष्ठता के बजाय आज मनुष्य का जीवन हम देखते हैं और ही दुख और अशांतियों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति चाहे कलाकार है चाहे कोई भी क्षेत्र में है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा जीवन सुख और शांति में हो, श्रेष्ठ जीवन हो। तो श्रेष्ठ जीवन कैसे बनाया जाए, कहा ना दिव्य मानव, मानव दिव्य था, मानव देव था, आज वही मानव क्या बन गया है, दैत्य बन गया है। तो दिव्य मानव कैसे बने, दिव्य मानव किसको कहा जाता है, वो यहाँ पर विशेष बताया जाता है कि जिसके जीवन में दिव्यता है, दिव्य गुण है, वो दिव्य मानव बन सकता है। इसके लिए एक कहावत कहते हैं कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। लेकिन आज हम देखते हैं कि नर की करनी कैसी है और नारी की करनी कैसी है, कि करनी से लक्ष्मी और नारायण बन सकते हैं, तो वो करनी कैसी होनी चाहिए जिसके आधार पर नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन सके। तो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी अर्थात दिव्य मानव, श्रेष्ठ मानव बनाने के लिए परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर आए हुए हैं और आकर के हम सभी मानवों के जीवन के अंदर दिव्यता भरकर, दिव्य गुण भर करके हमको देव मानव बना रहे हैं। क्योंकि जैसे देखो फूल होता है तो फूल की वैल्यू है उसकी खुशबू से, चांद की वैल्यू है उसकी शीतलता से, इसी प्रकार से हम मनुष्य आत्माओं की वैल्यू भी तभी है जब हमारे अंदर वो दिव्य गुण है, दिव्यता है, तभी हम श्रेष्ठ कहला सकते हैं। तो अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए वो कला हमें यहाँ पर सिखाई जाती है। आप सभी अपनी अपनी विशेष कलाएं लेकर के यहाँ आए हैं और कला प्रदर्शित करते हैं, तो परमात्मा भी हम आत्माओं को ऐसी श्रेष्ठ कला सिखाते हैं जिससे हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो मनुष्य से देवता बनने के लिए अपने जीवन में वो दिव्यता को धारण करना है और उस दिव्यता को धारण करने के लिए विशेष यहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है जिसके आधार से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और दिव्य बना सकते हैं। आज आप सभी इस ज्ञान सरोवर परिसर में विशेष पधारे हैं, तो मैं यही आप सबके साथ यही शुभ आशा रखेंगी कि आप सभी यहाँ से अपने जीवन में श्रेष्ठता, दिव्यता और जीवन को सुख शांति में बनाने की कला सीख करके यहाँ से जाएंगे, यही मेरी आप सबसे विशेष आशा है। ओम शांति।
ओम शांति। चंद शब्दों में दीदी ने बहुत सुंदर हमको मार्गदर्शन दी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह 6 से 6:30 बजे यही हॉल में एक्सरसाइज रहेगा और उसके साथ साथ 6:30 से 8 बजे तक राजयोग सत्र रहेगा जिसका विषय है दिव्यता का आधार स्व अस्तित्व की पहचान। दिव्यता का आधार स्व अस्तित्व की पहचान। हम आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे ऋषिकेश चूरी जी जो म्यूजिशियन है, प्लेबैक सिंगर एट इंडियन एम्बेसडर एट earthday.org, ग्रैंड जूरी एट GTV सारेगामा पा लिटिल चैंपियंस 2020, प्लेबैक सिंगर एट 13 इंतजार, प्लेबैक सिंगर एट हाउसफुल 3 फिल्म, फॉर्मर ग्रैंड जूरी एट GTV सारेगामा पा लिटिल चैंपियंस 2019, फॉर्मर ग्रैंड जूरी एट GTV सारेगामा पा 2018, फॉर्मर ग्रैंड जूरी एट GTV सारेगामा पा लिटिल चैंपियंस 2017, फॉर्मर प्रेसिडेंट टाइटल एट रोट्रैक क्लब ऑफ बॉम्बे बैंड्रा, स्टडीड बैचलर ऑफ कॉमर्स एट MMK कॉलेज बैंड्रा, स्टडीड एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, स्टडीड MBA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एट माधुरी कामराज यूनिवर्सिटी, वेंट टू IES स्कूल किंग जॉर्ज हिंदू कॉलेज दादर, लिव्स इन मुंबई महाराष्ट्र, ब्रदर ऋषिकेश चूरी जी।
First of all, thank you so much for inviting me. आज मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा. Thank you for giving such a good introduction. Thank you so much. पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स और ब्रह्म कुमारी का थैंक यू कहना चाहूंगा कि मुझे आज यहाँ पे बुलाया और इतने अच्छे प्रोग्राम का मुझे पार्ट बनाया. चंद्रिका दीदी, थैंक यू सो मच. आपने एक बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है फॉर कल्चरल विंग ऑफ ब्रह्म कुमारी. इसके लिए आई एम नॉट अ स्पीकर. आपको एक समझा होगा कि आई डोंट स्पीक. मैं इतना अच्छा स्पीकर नहीं हूँ. आई एम अ गुड लिसनर एंड आई एम अ स्टूडेंट. आई बिलीव कि मुझे एक स्टूडेंट बनना ही मुझे अच्छा लगता है. और आज यहाँ पे सबको मुझे सभी को सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है. तो आई थिंक आई विल नॉट टेक मच ऑफ अ टाइम. आई विल थैंक एवरीवन फॉर हैविंग मी हियर टुडे एट दिस इवेंट. एंड मैं सभी को अभी और सुनना चाहूंगा. और यहाँ पे आके मुझे बहुत पीसफुल लगा. जैसे मैंने इस प्रिवाइस में एंटर हुआ हूँ, मुझे बहुत पीसफुल लगा. माई डैड वॉज अ ब्रह्म कुमारी फॉर 20 years. ही वॉज फॉलोइंग ब्रह्म फॉर 20 years. मतलब सुबह से 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे उठना से लेके मुरली हर रोज पढ़ना एंड एवरीथिंग इज टू फॉलो एवरी डे. एंड ही वॉन्टेड मी टू कम हियर सिंस अ लॉन्ग टाइम. हो नहीं पा रहा था. बट समहाउ समथिंग हैपन्ड ऑन हिज 6th डेथ एनिवर्सरी. मुझे स्मिता बहन ने मुझे कॉल किया था एंड तभी मैंने कहा कि डेफिनेटली मैं आना चाहूंगा यहाँ पे. एंड ये कोइंसिडेंस है और बाबा का मुझे आई थिंक ये बुलावा था कि मुझे आज मैं यहाँ पे हूँ. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच.
बहुत अच्छी बात उन्होंने कही. उनका 20 साल पहले ही बीज डला हुआ था और आज उनको आने का मौका मिला और उन्होंने बहुत सुंदर अपना अनुभव सुनाया. थैंक यू भाई जी. अभी हम आगे बढ़ते हुए आशीर्वचन और मेडिटेशन के द्वारा अपने को लाभ हम सभी लाभ लेंगे. हमारी चंद्रिका दीदी. चंद्रिका दीदी राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत कला एवं संस्कृति प्रभाग के अध्यक्षा हैं और युवा प्रभाग के उपाध्यक्षा हैं. अहमदाबाद महादेव नगर सब जोन ब्रह्मा कुमारी के आप डायरेक्टर हैं. आप 34 सेवा कार्यों का सुचारू रूप से संचालन करते हैं. ब्रह्मा कुमारी की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं. आपका ब्रह्मा कुमारी संस्था में विशेष योगदान रहा है. आप ब्रह्मा कुमारी में राजयोग शिविर के निर्माण के निमित्त बने हैं. करतल ध्वनि करें. आपके नेतृत्व में युवा प्रभाग के द्वारा जो प्रोजेक्ट्स हुए उसमें से कई प्रोजेक्ट को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ताली बजाई भाई एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान शामिल है. आपको युवाओं की सेवा के लिए 1 मई 2002 को तत्कालीन गुजरात के गवर्नर सुदर्शन सिंह भंडारी जी के द्वारा गुजरात गौरव से सम्मानित किया गया है. और दीदी का जो युवा की जो स्पिरिट है उसके लिए हम दीदी जी को नतमस्तक करते हैं. दीदी जी हमको अभी मेडिटेशन और आशीर्वचन के द्वारा लाभान्वित करेंगे. चंद्रिका दीदी.
ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. परम कलाकार के आह्वान पर, उनके बुलावे पर, उनके निमंत्रण पर इस प्रांगण में पहुंचे हुए सभी देवी मानव देवात्माओं का अभिनंदन है, अभिवादन है, धन्यवाद है. मंचस्थ महानुभाव, सभा में उपस्थित सभी मेरे दिव्य भाई बहने, मैं इस कार्यक्रम की महानता का वर्णन किन शब्दों में करूं. जिसके अंदर ये छुपा हुआ है कि मानव में छुपे हुए देव को हम प्रकट करें, उसका प्रगटीकरण करें। एक छोटी सी कहानी के आधार पर मैं बात शुरू करती हूं। अमेरिका में एक आर्टिस्ट को विचार आया कि मैं एक ऐसा चित्र बनाऊं मानव का जिसमें स्वयं भगवान का प्रगटीकरण दिखाई दे, अ मैन अ गॉड इन मैन, मनुष्य के अंदर भगवान। तो उसने बहुत जगह भ्रमण किया, फिर एक 25 साल के युवान को देखा और उसको देख करके उसको ये आभास हुआ कि ये सचमुच भगवान का दूसरा रूप नजर आ रहा है, इसके अंदर बहुत दिव्यता नजर आ रही है। वो उनके नजदीक गया और उससे पूछा, मैं आपका चित्र बना सकता हूं? उसने कहा, प्रेम से बनाइए। उसका चित्र बनाया, फिर उसको दिखाया, फिर कहा, मैं इसको लोगों के बीच रख सकता हूं? तो कहा हाँ। वो चित्र हजारों की संख्या में बिका लोगों के बीच, एक मानव के अंदर भगवान का प्रगटीकरण। ऐसा सुंदर एक कलाकार ने चित्र बनाया और वो लाइव मनुष्य का। बहुत आर्टिस्ट होते हैं, फटाफट बना देते हैं ना। फिर उसी आर्टिस्ट को संकल्प आया 25 साल के बाद कि अभी मैं एक ऐसा इंसान बनाऊं जिसके अंदर डेविल दिखाई दे। वो निकला एक पेड़ के नीचे, बाल फेंदे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे और ऐसे ही गिरा हुआ था, मुख में से ड्रिंक की बास आ रही थी। उनको लगा कि ये बरोबर शैतान दिखाई पड़ता है, इनके अंदर शैतानियत दिखाई पड़ रही है। तो उसने उसके नजदीक जाकर के पूछा कि मैं आपका चित्र बना सकता हूं? आप बना लीजिए, नशे में ही उसने चित्र बनाया। 25 साल के बाद वो चित्र उसको दिखाया, वो देख करके बहुत रोने लगा, बहुत रोने लगा। वो आर्टिस्ट कहे, क्या हुआ, आप क्यों इतना रोते? उसने वास्तविकता कही कि 25 साल पहले आपने ही मेरा पिक्चर बनाया था। समझ में आ रहा है कुछ? 25 साल पहले आपने ही मेरा चित्र बनाया था, अ गॉड इन मैन, और आज मैं शैतान बन गया हूं। हम अपने अंदर झांके, हम कौन थे और हम आज क्या बन गए हैं? मानव के अंदर ही चार क्वालिटी है, दानव मानव, मानव मानव, योगी मानव और देव मानव। मैं उसकी डेफिनेशन आपको सुनाती हूं। मनुष्य में विवेक है और अपने विवेक से वो अपने आप को ट्रांसफर करना चाहे तो संकल्प की शक्ति से वो अपने को एक सेकंड में ट्रांसफर कर सकता है। वो शैतान से संत बन सकता है, वो दानव से देव बन सकता है, वो भोगी से योगी बन सकता है। दानव मानव किसको कहते हैं? जो कहते हैं मेरा तो मेरा लेकिन तेरा भी मेरा। और जो अच्छे काम करते नहीं है और किसी को अच्छे काम करने देते नहीं है वो है दादों। मानव किसको कहते हैं? जो कहते हैं मेरा मेरा तेरा तेरा स्वार्थ, और वो एक दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन करते जाते हैं, कहते जाते हैं, सुनाते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया वो किया वो किया हा? और स्वार्थ, ये मानव। उसके ऊपर है योगी। योगी कहता है ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, सब कुछ ऊपर वाले का है। और जीवन में कितने भी बड़े काम कर ले उसे कभी अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि उसे मालूम है ये कुछ भी सब कुछ कराने वाला तो परमात्मा है, करण करावनहार ईश्वर है। ऐसी मानसिकता योगी की होती है। देव किसको कहते हैं? देव कहते हैं तेरा भी तेरा मेरा भी तेरा। जो दे वो देवता। दाता वृत्ति ही दिव्यता है। जैसे परमात्मा को लोग प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि वो सबको देता ही देता है, उनको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए परमात्मा को दाता कहते हैं। आज प्रकृति को भी हम देवता कहते हैं, जल देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, क्योंकि वो देते हैं, हमारे से कुछ भी लेते नहीं है। अगर हमें देव बनवा है, हमारे अंदर सोए हुए देवत्व को हमें जागृत करना है, और हम ही परम कलाकार की वो श्रेष्ठ रचना है, वो हमें अनुभव करना है, तो ये घड़ी हमारी घड़ी है। ये घड़ी वो शुभ घड़ी है जिस घड़ी हम संकल्प करें और अपने देवत्व को जागृत करें। मंजूर है सभी को? मंजूर है? तो एक छोटा सा काम करना है, एक मिसाल दे के बताऊंगी। एक गुरु थे, उनके तीन चेले थे। एक दिन तीनों चेलों को बुलाया और एक एक लड्डू दिया और कहा कि ये ले जाओ और जहां कोई नहीं देखे ऐसी जगह पर जाके खा के आओ। तीनों गए। एक अपने घर में गया, कमरा बंद कर दिया, सोचा अभी कोई मुझे नहीं देख रहा है, खा लिया। दूसरा जंगल में दूर कहां गया, चारों तरफ देखा, कोई नहीं देख रहा है, खा लिया। तीसरा लड्डू खा नहीं सका, वो ऐसे ही लड्डू लेके वापस आया। तीनों गुरु के पास आए। गुरुजी ने तीनों से पूछा, एक ने कहा गुरुजी मैं घर में गया, चारों तरफ से दरवाजे बंद किए, कोई नहीं देख रहा था, मैंने खा लिया। दूसरों ने कहा मैं जंगल में गया, कोई नहीं देख रहा था गुरुजी। तीसरे ने कहा गुरुजी मुझे ऐसा कोई स्थान देखने में नहीं आया कि जहां कोई नहीं देखे, मैं तो देख रहा था अपने आप को, और आपने तो कहा था कोई नहीं देखे वहां खाना, और भगवान भी मुझे देख रहा है। देव बनना है? देव बनना है? अपने आप को सच्चाई से देखना सीखे। अपनी गलतियों को भी महसूस करना सीखे तो अपनी महानता को भी महसूस करना सीखे। कोई देर नहीं है मानव से देव बनने में। और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ आए हुए मेरे सब भाई बहने अपनी वो दिव्य प्रतिभा को अपने साथ लेकर के जाएंगे। कुछ घड़ियों के लिए हम उस महसूसता में जाएंगे, एकदम रिलैक्स होकर के बैठ जाएं, ना सारा ध्यान मस्तिष्क के बीच एकाग्र करें। महसूस कीजिए ब्रुकुटी के बीच में मैं दिव्यात्मा विराजमान हूं। मैं आत्मा दिव्य प्रकाश हूं, दिव्य ज्योति हूं। परमात्मा की दिव्य रचना, मैं दिवात्मा हूं। मैं आत्मा सत्य हूं, चैतन्य हूं। आनंद स्वरूप मैं आत्मा, दिव्य गुणों से संपन्न हूं। ज्ञान स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, शांति स्वरूप हूं, पवित्रता स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप। नैनों के द्वारा देखने वाली मैं आत्मा, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली इस शरीर रूपी साधन द्वारा जीवन के सर्वश्रेष्ठ साध्य को प्राप्त करने वाली मैं सिद्ध योगी हूं। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, परमपिता परमात्मा की संतान हूं। जैसे मेरे पिता, वैसे ही मैं दाता और रहम दिल हूं। मैं संकल्पबद्ध हूं कि विश्व की सर्व आत्माओं को मुझ आत्मा के द्वारा सुख, शांति, आनंद और सद्भावना प्राप्त हो। में अपना शुभ संकल्प प्रदान करती हूं। विश्व की सर्वात्माओं को प्रेम, शांति, खुशी, सद्भावना प्राप्त हो। ओम शांति, शांति, शांति। आप यहां आए हैं, 3 दिन में आपको प्रभु प्रसादी परमात्म ज्ञान प्राप्त होगा। आप स्वयं पर कृपा करके अपने जीवन में उसको अनुभव करके, आत्मसात करके उसको अपना स्वरूप बनाएंगे, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। ओम शांति।
सभी ने बहुत सुंदर मेडिटेशन भी किया और दीदी ने भी आशीर्वचन दिए, इसलिए दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आगे बढ़ते हुए हमारे हरविंदर मनकर इज एन इंडियन कार्टूनिस्ट, इलस्ट्रेटर, स्क्रिप्ट राइटर एंड फिल्म डायरेक्टर। ही इज ए फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द आर्ट स्टडी स्टूडियो कंपनी। ऑल्सो ही इज द क्रिएटिव डायरेक्टर एंड चीफ इलस्ट्रेटर फॉर लोटपोट मैगजीन। ही इज एडिटोरियल डायरेक्टर ऑफ द फिल्म मैगजीन मायापुरी। हिज कार्टून्स गॉट पब्लिश्ड इन लोटपोट, बाल भारती, नंदन, चंपक, बालमन, छोना एंड मैनी अदर मैगजीन्स। ही इलस्ट्रेटेड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज 11th प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बाय द नेम ऑफ APJ अब्दुल कलाम। रामेश्वरम टू राष्ट्रपति भवन, इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय अब्दुल कलाम हिमसेल्फ। राजीव गांधी ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड 2013, अरिहंत AGM एनुअल अवार्ड 2012, बेस्ट राइटर एंड डायरेक्टर। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। फरार हिंदी फिल्म बेस्ट प्रमोशन अवार्ड, चेतना भारती अवार्ड, मस्ट म्यूजिक अवार्ड, ऑनर्ड बाय ट्रू वुड फॉर स्क्रिप्ट राइटिंग एंड डायरेक्शन ऑफ डेकॉर्ड 7 शो। कल्पना लोक अवार्ड 2013, मोस्ट वर्सटाइल आर्टिस्ट ऑफ डेकेड। हरविंदर मनकर जी।
ओम शांति। आज इस परमपिता के इस पवित्र स्थान पर मेरा पहला कदम है, पहला सलाम है, पहला सजदा है, पहला प्रयत्न है। सब सोचते हैं पहले सलाम मैं क्यों करूं, सब सोचते हैं पहले सलाम मैं क्यों करूं, मैं किसी से कम हूं, मैं किसी से क्यों डरूं। दरअसल पहला सलाम ही उस पिता को मंजूर है, दूसरा तो दूसरा पहले से कोसों दूर है। जो कदम पहला उठता है उसकी तरफ जाता है, वो बाहें फैलाकर उसको अपने गले से लगाता है, क्योंकि आप उस क्रिएटर, उस रचनाकार की सबसे खूबसूरत कलाकृति जब अपने बनाने वाले की तरफ आकर्षित होती है, बढ़ती है, तो ये प्रकृति का, इस धरती का, कायनात का वो सबसे खूबसूरत क्षण होता है। मैं 14-15 साल का था जो मैंने पहला मोटू पतलू बनाया, तो वो एक पहला कदम उस ईश्वर का था जो उसने मेरी बाजू पकड़ी। फिर रास्ता कहीं नहीं रुका, फिर 800 से ऊपर एड फिल्में बनी, हॉलीवुड बनी, हिंदी बनी, जो भी उसने दिया, बहुत कुछ दिया। वो देता है, वो देने से कभी पीछे नहीं हटता है, वो पिता है, और पिता अपने बालक को जो देना जानता है वो जानता भी है कि उसको क्या चाहिए, यही उसकी खासियत है उस पिता की, उस परम पिता परमात्मा की। मगर हम अपने अहंकार, अपनी ईगो, अपनी स्वयं जो मैं है हमारे अंदर, उसके कारण हमेशा मात खा जाते हैं। हजरत सुल्तान बाहू ने कहा है कि तू तू करके जित्ती बाजी, मैं करके हारी हूं। जब मैं आ जाती है तो हम सब कुछ खो देते हैं, क्योंकि ये संसार, ये शक्ति, ये सब हमारे अंदर उसी ने डाली है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कदम उसी का लिखा है, उसी का किया है, उसी ने करना है, वही करता है। हम मात्र एक ऐसी कठपुतलियां हैं जो उसके इशारे पर चलती हैं। अगर उसको मान ले तो जैसे भी हालात हों, हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे गर सितारा तो भी जमीन पे नहीं गिरता। अरे गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, मगर किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। ये वो समंदर है, ये वो एक ताकत है, वो एक पावर है, वो सुख है, वो शांति है। ओम शांति कोई शब्द नहीं है, ओम शांति आपको अनुभूति देता है, महसूस कराता है कि आपके अंदर वो क्षण आ गया है जब वो पिता खुद पुकार रहा है कि आओ आओ मेरे सामने, आओ मेरे पास, आओ मेरे गले से लग जाओ, क्योंकि तुम वो सर्वश्रेष्ठ कलाकृति हो। हमें कुछ नहीं करना, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है, हमें सिर्फ पहला कदम बढ़ाना है। हम अक्सर बात करते हैं, हम गीता को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, रामायण की नहीं मानते, गुरु ग्रंथ साहब की नहीं मानते। जब तक अमल नहीं करेंगे उस लिखे हुए पे, जब तक इस सब को प्रैक्टिस में हम नहीं लाएंगे, तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। ये अभ्यास का मार्ग है, अभ्यास करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। फिर कहते हैं कि अगर वो ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं दिखता, हमें आभास क्यों नहीं होता उसका। दिखता है, बुले शाह कहते हैं, दिखदा है कोई शक नहीं, साड़ी वेखण वाली अख नहीं, ओदे यार निराले ने पत्थरां चो लभ लैंदे जिहड़े अखियां वाले ने। अब सवाल खड़ा होता है कि आंखें तो सबके पास हैं, फिर क्यों नहीं दिखता, फिर भी क्यों नहीं दिखता। कोशिश तो कीती है लभण लई लखां ने, पर जिन्हां नूं वो दिसदा है कोई होर ही अखां ने, वो कोई और आंखें हैं जिनसे वो नजर आता है। वो मन की आंखें हैं, वो रूह की आंखें हैं, वो आत्मा की आंखें हैं, वो तीसरी आंख या शिव की, शिव नेत्र कहा जाता है। उसको देखना है तो उसको महसूस कीजिए, उसके कहे पे अमल कीजिए, उसकी राह में चलिए, सोच को बदलिए। ये जगह आपकी सोच को ही बदलती है। जब मैंने पहला कदम इस प्रांगण में रखा, ज्ञान सरोवर में, मैं कभी नहीं आया, मैं माउंट आबू ही कभी नहीं आया आज तक, शायद दुनिया के हर कोने में गया। ये जगह एक इंतजार में थी कि वो वक्त आएगा बेटा जब तू आएगा तो खुद चल के आएगा, तो खुद मौजूद होगा। वो सब लिखा हुआ था, बस वो घड़ी, वो वक्त, वो इंतजार जो होता है ना, उसके बीच में ही इंसान से दानव बनने की प्रक्रिया चलती है। जो वहां रुक गया, जो वहां संभल गया, जिसने परमात्मा का ध्यान कर लिया, जिसने उसको पहचान लिया, जिसने अपनी सोच को उसके चरणों में लगा दिया, वो पार हो गया। पाना है अगर मंजिल को तो अपनी सोच को बदलो, कश्तियां बदलने से कभी साहिल नहीं मिला करते। अपनी सोच बदलें, अपने आप को सही रास्ते पे लाएं, उस पिता के कहे में आएं, उसके चरणों में आएं, यकीन मानिए वो सब कुछ देगा। चाहिए ही क्या हमको, हमको चाहिए ही क्या, भौतिक वस्तुओं से हमारा कुछ नहीं बनने वाला। हमें जो सुख मिलेगा वो हमारे अंदर से मिलेगा, हमारी आत्मा से मिलेगा, उसके कहे से मिलेगा, उसके दिए से मिलेगा, उसके किए से मिलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
ओम शांति। आगे बढ़ते हुए शुक्रिया भाई जी। अंजलि अरोरा जी, एक्टेड इन सीरियल्स लाइक शक्ति मान, बंधन, हैप्पी होम, नरगिस, एक अनार सौ बीमार, प्यार ना होगा कम, नाव्या, अग्निचक्र, किस्मत कनेक्शन, सौतन, आंगन बहुत सारा है ना। फिल्म्स लाइक आलू चाट, मनोरमा, सिक्स फीट अंडर, सुल्तान, और आप उनको देखकर ही पहचान जाएंगे वो कितने सुंदर आर्टिस्ट हैं। लॉट्स ऑफ एंकर शोज, गुड टाइमिंग इन कॉमेडी, रनिंग प्रोडक्शन हाउस इन विच वी मेक हिंदी फिल्म एंड सीरियल्स, बहुत अच्छे इंस्टेंट आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छी अदाकारा हैं अंजलि अरोड़ा।
ओम शांति। सबसे पहले मैं श्री बाबा का शुक्रिया अदा करूंगी जो मुझे इतना यहाँ पे हर पल बुला भी लेते हैं और हर पल उनके आशीर्वाद और चमत्कारी किरणें मुझ पर बौछार करती रहती हैं। मंच पर उपस्थित और सभा में उपस्थित सभी महान आत्माओं को मेरा प्रणाम और ढेर सारा प्यार। अब समय बहुत कम है, इतना प्यार और नमस्कार करूंगी तो सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। पहले मैं बहुत कुछ सोच के आई थी कि मैं अपना कोई ये अनुभव सुनाऊंगी, वो अनुभव सुनाऊंगी, फिर जैसे जैसे सब लोग बोलते गए मेरे विचार बदलते गए। अब चंद्रिका दीदी ने जैसे बताया तो संकल्प की शक्ति और देना, देव शक्ति, इस पे मुझे कुछ एक अनुभव याद आया। संकल्प तो ये है कि मैंने ब्रह्मा कुमारी में आके क्या सीखा इसमें बताऊंगी। कि पहले संकल्प हमें पता ही नहीं था ना, हम तो सोच समझते थे, थॉट्स हैं। जैसे जब मैं शक्तिमान सीरियल या और कुछ मेरे सीरियल्स ऐसे थे जो एक साथ आते थे तो पब्लिक पहचानती थी, और मेरी शुरू से आदत है पैसे बचाने की, तो मैं फ्लाइट में ना जाके कोशिश करती चलो ट्रेन में चले जाओ, पैसे बचे हैं फ्यूचर के लिए। तो ट्रेन में जाती थी तो एक किसी ने मुझसे पूछ लिया कि ऑटोग्राफ लिए, फिर बोलते अरे फिल्मी वाले लोग तो ऐसे होते हैं, वो तो ऐसे रहते हैं, बाथ टब में नहाते हैं और उनका तो ऐसे और वैसे बहुत हाईफाई, और आप ट्रेन में ट्रेवल कर रही हैं। अब मुझे भी उस समय लगा कि मैंने फिर बहाना वहाना लगाया, क्योंकि अब ज्ञान थोड़ी था, हम लोग तो हवा में उड़ते थे। तो उस समय मुझे लगा, एक थॉट आया कि यार ऐसा होना चाहिए कि मेरा फिल्मी फेस अलग होना चाहिए और प्रैक्टिकल जो मैं घूमती फिरती हूँ अलग होना चाहिए, ताकि मैं कैसे भी घूमूं मुझे कोई पहचाने नहीं। अब एक टाइम ऐसा आ गया कि मुझे मोबाइल पे दिखाना पड़ता है अरे मैंने ये किया हुआ है, कोई पहचानता ही नहीं है, क्योंकि अब उम्र भी बढ़ गई, शक्ल भी चेंज हो गई, वजन भी बढ़ गया, सब बढ़ गया, लेकिन वो सब घट गया जो उस समय था। लेकिन यहां आने के बाद, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद मुझे ये लगा कि किसकी पहचान, किसको ढूंढ रही हूं मैं, कौन पहचाने मुझे। जब उसने मुझे ढूंढ लिया, उसने मुझे पहचान लिया, तो मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब मुझे वो मिल गया है। और इन्होंने एक बात कही देने की बात, मैं सबको वैसे ज्यादातर लोगों को पता है कि मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी, मेरे बेटे ने शरीर छोड़ा, उसके बाद ही मैं रात के 12 बजे थे ऐसे जोत जला के, बहुत सारे मेरे मंदिर में कोई ऐसा भगवान नहीं था जिसकी मूर्ति ना हो, जोत जला के बैठी थी, एक खटाक से 12 के बजे के कुछ टाइम था वो जोत बुझी और एकदम मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ कुछ हुआ है, समझ नहीं आया क्या हुआ। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई भगवान पे से विश्वास उठा कुछ है, तो मैं बेचैन हो गई, मुझे लगा कोई शक्ति है जो मुझे खींच रही है। जब उसके कुछ महीनों बाद मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी तब मुझे महसूस हुआ कि वो शक्ति क्या थी जो मुझे खटाक से यहाँ की ज्योति जली थी मेरी। और जो मैं देने की बात कर रही हूँ ये है कि मैं बहुत शुरू से चुलबुली रही थी और कहीं पार्टी वार्टी में गाना गाना, डांस करना, जोक सुनाना, तो इससे सब लोग मुझे इनवाइट करते थे, मैं भी बड़ी खुश होती थी कि चलो जी। आज समझ में आया कि वो तो उनका स्वार्थ था। फिर जब मेरे बेटे ने शरीर छोड़ा, मैं अकेली रही, बहुत सारे लोग जो रोज फोन करते थे फोन आने बंद हो गए, तो मैंने कहा यार मुझे कोई फोन ही नहीं करता। फिर धीरे धीरे मैंने फोन, क्योंकि अकेलापन था तो मैंने फोन करने शुरू किए कि अरे आपने बहुत दिनों से कोई फोन ही नहीं किया। कहते नहीं, हमने सोचा अंजलि बड़ी दुखी होगी, क्या फोन करके उससे बात करें। तो जब मैं इस संस्था से जुड़ी, मुझे ये विचार आए कि अब आप एक देखिए, कोई शादी में आप जाते हैं, किसी के घर में कार्ड आता है, जो आम पब्लिक की बात कर रही हूँ, एक 1100 रुपए का लिफाफा लेके जाएंगे, पूरा परिवार पहुंच जाएगा ये सोच के कि आज रोटी नहीं बनानी पड़ेगी घर पे, तो फटाफट शादी में पहुंचेंगे। और जब कोई दुखी होता है या कोई शरीर छोड़ता है या वैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या सब लोग जाते हैं, पूरा परिवार जाता है? नहीं जाता ना। तो मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है आप देने में धन ही दें, आप देने में अपना समय, अपने बोल, अपने मीठे बोल, अपने कुछ दुआएं, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, बहुत कुछ दे सकते हैं आप, जो किसी की जरूरत बन सकते हैं। तो देव वैसे देव भी बन सकते हैं। तो ये संस्था इतना कुछ सिखाती है,
मैं जब इस संस्था से शुरू में जुड़ी थी, तपस्विनी बहन को तो पता है, मैं बहुत ही उस समय भी देह अभिमान में थी। जुड़ तो गई थी, कोर्स भी कर लिया था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपने कोर्स कर लिया और जुड़ गए, लेकिन उस समय मुझे इनवाइट किया जाता था कलाकार के हिसाब से, तो घमंड में ही जाती थी। ये मुझे आज महसूस होता है, मुझे उस समय नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। बात करती थी, मेरा बात करने का स्टाइल अलग था, मुझे आज महसूस होता है कि वो स्टाइल क्या था, मुझे तब नहीं पता चलता था। हम क्या कर रहे हैं हमें कभी कभी बाद में जाके पता चलता है कि ओहो हम ऐसा करते थे, तो अपने आप से घृणा होती है कि हम काश कोर्स करके, और वो ये चीज आपको योग से आएगी, प्रैक्टिस से। और योग भी मुझे, मैं अपना शायद आपको हंसी आए क्योंकि ये सब तो कितने कितने सालों से जुड़े हैं, हमें तो अभी 6-7 साल हुए हैं, तो जरूरी नहीं है आप योग करने के लिए एक जगह बैठे या वो करें। मेरा योग शक्ति लगाने का तरीका कुछ अलग ही हो गया, मैंने तो बाबा को अपना फ्रेंड बना लिया। बाबा देखो आज मेरे साथ ये हुआ, बाबा मेरे साथ ये हुआ, बाबा अरे बाबा ये हो गया, मतलब यू नो, और मेरी बातें ऐसे लग रहा था वो सुन रहे हैं, जैसे अभी बोली इंस्टेंट कल हो रही है। एक दिन मैं ऐसी रूम में ऐसे से करी, बाबा ये बाबा ये, अचानक मेरी डॉटर लाइन रूम में आई, डॉटर लाइन हो गई रूम में, मम्मी जी क्या कर रहे हो आप? मैं कहा वो बेटा वो स्क्रिप्ट आई है, एक ऑडिशन भेजना है, वो प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो खुद ही लगा कि अरे आगे से मतलब यू नो। तो आप योग लगाए और सच्चे मन से किसी भी तरह से लगाए तो वो सुनता है, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। जब एक बच्चा अपने बाप या माँ से कुछ मांगता है, जरूरी नहीं है वो रो के मांगे, हंस के मांगे, चंचलता से मांगे, या सच्चे मन से मांगे, या बिना बोले भी कुछ बोले, तो वो सब कुछ समझ जाते हैं। बस इतना ही कहूंगी क्योंकि समय बहुत ही कम है, बहुत लोगों को शायद भूख भी लगी होगी। ठीक है, ओम शांति, थैंक यू, आपका आशीर्वाद।
आपने बहुत अच्छा बताया बाबा के साथ कैसे बात करें। हमारे लास्ट अनिल भाई जी, अनिल भाई हमारे बहुत ही मीठे भाई हैं, एक्टिव मेंबर आर्ट एंड कल्चर विंग के हैं। शुक्रिया कहने वाले बहुत हैं कम, अनिल भाई की बातों में बड़ा है दम, जो बोलने आए हैं सबको थैंक्स, वो देंगे वोट ऑफ थैंक्स। और उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं, ये डायरी पेन जैसे दयाल भाई जी ने बताया था, आप सबको गिफ्ट की रीति से मिलेगा। ये दो चीजें हैं, इसमें से एक आपको लेना है, ये लक्ष्मी नारायण का फ्रेम है और ये डायरी पेन है। तो वोट ऑफ थैंक्स के बाद दोनों साइड से आप लाइन में आएंगे और आप सभी को ये गिफ्ट मिलेगा। अनिल भाई जी,
ओम शांति, ओम शांति। हम सर्वप्रथम शुक्रगुजार करेंगे, हम अपने पारलौकिक परमपिता श्री परमात्मा को हम बड़े प्यार से शिव बाबा कहते हैं, जिसकी महिमा ही क्या है कि मनुष्य से देवता की एक करतन लागी बार, जो नर से नारायण बना देता है, कांटों को फूल बना देता है, ऐसे प्राण प्यारे श्री बाबा को बहुत बहुत दिल से अहोभाव की कृतज्ञता से हम शुक्रिया करेंगे, आभार वंदना करेंगे। आप सब भी आभार वंदना करने के लिए आप तालियों से बाबा का शुक्रगुजार करेंगे। और हमारे अति प्राण प्यारे ब्रह्मा बाबा, जो शिव बाबा के साकार माध्यम बने और जिनके द्वारा परमात्मा ने मनुष्य से देवता बनाया, इसको हम ब्रह्मा वत्स, हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया कैसे बने, तो ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हैं हम। तो ऐसे प्यारे ब्रह्मा बाबा को, जिन्होंने अपना तन मन धन जन समय सब कुछ स्वाहा कर दिया, यज्ञ परमात्मा ने रचा, तो ऐसे प्यारे ब्रह्मा बाबा को बहुत दिल से अहोभाव से कृतज्ञता से हम शुक्रगुजार करेंगे, धन्यवाद करेंगे, आभार प्रकट करेंगे। साथ में अभी तो दादियां नहीं है, फिर भी दादियों की त्याग तपस्या सेवा से 87 ईयर से ये संस्था आगे बढ़ते बढ़ते आज देवी दुनिया की स्थापना में संपन्न हो रही है। तो परमात्मा के कार्य में जो मददगार बनी दादियों का भी हम बहुत दिल से आभार वंदना करेंगे, स्नेह वंदना करेंगे, साथ में उनको दिल से शुक्रगुजार रहेंगे हम। आप सब भी आए हो श्रोतागण, तो आपका भी जो भारत के भिन्न भिन्न कोने से आए हैं, तो आपका भी हम शुक्रिया प्रदान करते हैं। साथ में जो महानुभव मंच पर उपस्थित है, जिन्होंने अपना समय, अमूल्य समय निकाल करके जो अभी यहाँ भाषण प्रकट किए हैं, हम उनको भी एक एक लाइन में हम उनका शुक्रगुजार करेंगे और आप सब उनका भी करतल ध्वनि से जरूर स्वागत करेंगे, आभार प्रकट करेंगे।
हम सर्वप्रथम हरीश भाई मोहल जो अपने बहुत अमूल्य समय निकाल करके आज विशेष बॉम्बे से आए, कल ORC में दिल्ली जाना है उनको, तो आज एक गीत के लिए आए और कल भी स्वागत सत्र में एक गीत के लिए खास विशेष अपना समय निकालकर अपनी मुलायम जादुई आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो हरीश भाई जी, मैं आपका बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ और आप करतल ध्वनि से उनका भी स्वागत और आभार प्रकट करना। इसके साथ में हमारे बहनों ने बहुत वेलकम किया, बहनों को भी हम वेलकम करने के लिए मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ और स्वागत नृत्य करने वाली बहनों का भी आभार प्रकट करता हूँ। साथ में मधुर वाणी ग्रुप जिन्होंने सतीश जी ने इतने सुंदर गीत के शब्दों थे कि हम उसकी शब्दों की जैसे कि हम स्वरूप बनते जाएंगे तो लगता है कि सत्य की स्थापना की उन्होंने जो गीत की रचना की थी और उसने मधुर गीत गुंजन किया था, उसके लिए पूरी टीम को हम बहुत दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और हमारी राजयोगिनी प्रेम दीदी ने बहुत सबका दिल से धन्यवाद किया। प्रेम दीदी के स्वरूप में ही प्रेम स्वरूप है और इतना प्रेम से उनके एक एक शब्दों में प्रेम भावना थी, स्नेह भावना थी, तो प्रेम दीदी का भी बहुत दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। हमारे मोहन सिंगल भाई बहुत ही आदि वरिष्ठ भाई हैं, उन्होंने साकार बाबा की बहुत ही सुंदर पालना ली है, उसने इस सभा इस ज्ञान सरोवर का अवलोकन किया है और अवगत किया है, उसके लिए उनका भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमारे राजयोगिनी दयाल भाई जी, दयाल भाई की तो बात ही न्यारी है, उनकी जो एज के हिसाब से उसकी सेवा की स्पिरिट बहुत है। आज भी मैं कहता हूँ दयाल भाई ने जो सिनेमा वर्क में बॉम्बे में आकर जो सेवाएं प्रदान की है और उसी के फलस्वरूप में आज कई लोग आते हैं। मोनिका पटेल है, जैसे अभी भी आपने सुना है कि अंजलि अरोरा जी है, ऐसे कई सिनेमा लोगों को उन्होंने प्रेरणा की और यहाँ आकर के उन्होंने पालना की, ऐसे जो स्पिरिट वाले हैं अपने दयाल भाई जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे। और हमारे ब्रदर जुगनू भाई जो एक वरिष्ठ भाई है, जो बहुत ही वेतरण एक्टर है और उनका कलाकार में जो उसने बताया था कि आत्मज्ञान का संबोधन किया इन्होंने, इसके लिए आत्मज्ञान के लिए मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। हमारी राजयोगिनी प्रभा दीदी, प्रभा दीदी एक देवी स्वरूप में है, उनका एक आभास और जो उनके शब्दों थे, जैसे कहते थे कि अभी देवी दुनिया की स्थापना हम उनके वचन द्वारा ही प्रसिद्ध हो जाते हैं और वो यहाँ की डायरेक्टर भी है ज्ञान सरोवर की, हम उसका बहुत बहुत दिल से तह दिल से धन्यवाद प्रकट करते हैं। साथ में हमारे स्मिता सहस्त्र बुद्धे जो खास करके मानसिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है, शायद वो अभी चले गए हैं, परंतु उन्होंने बहुत ही एक संवेदना और भावना पूर्वक गीत गुंजन किया था और उसने अपनी बताया कि ललित कलाओं द्वारा हम एक प्रेम और करुणा से एक आध्यात्मिक जीवन लोगों की बना सकते हैं, तो उसके लिए भी बहुत दिल से हम प्रकट करेंगे धन्यवाद। साथ में हमारी चंद्रिका दीदी की तो मैं किन शब्दों में उनका आभार प्रकट करूं, वो तो जैसे कि एक हमारी दादी के स्वरूप में भी है, बाबा के स्वरूप में भी पति रूप में बैठी हुई है, इतने सुंदर उन्होंने प्रसंग का व्यक्तित किया है कि मैं गॉड इन मैन एंड डेविल इन मैन के द्वारा बताया गया कि हम भी मनुष्य से देवता बन सकते हैं परमात्मा की ज्ञान और मुरली के द्वारा, और इतना सुंदर मेडिटेशन कराया जैसे कि हम वो उसमें ही मेडिटेशन में भी बहुत सुंदर अनुभव कराया, तो हम बहुत बहुत दिल से उनका शुक्रिया करेंगे, आभार प्रकट करेंगे और तह दिल से एक शक्ति स्वरूपा चंद्रिका दीदी का हम धन्यवाद करेंगे। और इसके साथ में ऋषिकेश चुरी जी जो हमारे साथ में ही आए थे और वो भी सिनेमा के जैसे कि बहुत नम्र है और बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया कि मेरे पिताजी 20 साल से ये ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए थे और उन्होंने अपना अवभाव प्रकट किया, इस अवभाव प्रकट करने के लिए मैं उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और हरविंदन मंकर जी ने बहुत अच्छा बताया कि पहला सलाम परमात्मा को करना है और परमात्मा बाहें पसारे खड़े हैं हमारे स्वागत करने के लिए और हमारी हर दुविधा को सुविधा में प्रकट करने के लिए, तो वो भी एक बहुत ही हरविंदर मंकर जी का भी हम दिल से स्वागत करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। वो खास दिल्ली से आए हैं, वो कहते हैं कि ये प्रथम उनका पर्यटन था, फिर भी उन्होंने बहुत सुंदर रीति से अवलोकन करके अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया, ऐसे अनुभूति प्राप्त कराई। अंजलि अरोरा जी की तो बात ही नहीं आ रही है, वो तो कहते कदम कदम पर बाबा को साथ में रखो और ऐसा अनुभव करो कि बाबा हमारे साथ है और आपका हर कार्य सरलता से सिद्ध हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, दुविधा सुविधा में हो जाएंगी, उसका भी धन्यवाद प्रकट करेंगे। और साथ में तपस्विनी बहन जिन्होंने बहुत सुंदर रीति से मंच का संचालन किया, और तपस्विनी बहन तपस्या स्वरूप में ही है, वो भी हमारी अति प्रिय बहन है और बॉम्बे की वरिष्ठ टीचरों में है, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और साथ में जो पर्दे के पीछे जो रहने वाले हैं, जैसे हमारे बॉम्बे से काफी बड़ी टीम के हैं, तो एल्फिस्टन सेंटर से जो हमारी बहनें ने स्वागत किया, जो संचालन किया है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और जो धन्यवाद करता हूं। खास करके बॉम्बे से काफी लोग आए हैं, 15-20 जन जो भी सेवा में आए, उनको नाम सहित एक एक का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। और ज्ञान सरोवर के हरेक जो भी अपने जैसे खान पान के डिपार्टमेंट है, ये सभी डिपार्टमेंट का नाम सहित धन्यवाद प्रकट करता हूं, क्योंकि धन्यवाद में बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए हमारी एक वरिष्ठ बहन है शीतल बहन का एक नाम सहित धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने बैक ऑफ द स्टेज बहुत सुंदर कार्यक्रम का संचालन किया है। ओम शांति।
अनिल भाई का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।